अब शुरू से आप पढ़ा दीजिए. ओके, दोनों दुआओं को शुरू से अब तक एक दफ़ा दोहरा दीजिए. दोनों दुआओं को अब आप सब फोकस करें और दोनों दुआओं को एक एक करके. जी आप अब पढ़ाइए और ये पीछे पढ़. और जो स्टूडेंट्स घर से सुन रहे हैं वो भी पढ़ेंगे ऊंची आवाज में इंशाल्लाह. उनके घर के दरो दीवार जो है वो इसको सुनेंगे और जवाब भी देंगे इंशाल्लाह. और आप लोग बिल्कुल इस वक्त पढ़ने पढ़ने को भूल जाएं, मांगिए. और अब तो तर्जमा भी सामने है ना. आप देखिए कि जब तक दुआ आपके दिल की पुकार ना बन जाए बात बनती नहीं. तो बिल्कुल फर्स्ट से लेकर अभी तक की सब दुआओं को आप बोलिए, फिर आप पीछे दोहराएं एक आवाज़ में. लेकिन आपके बात करने और बोलने से अंदाज़ा होना चाहिए बैगिंग स्टाइल. इस वक्त तजवीद मखारज वो काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ, इसको भूल जाएं. अब इस वक्त ये सोचें कि आप जो मांग रहे हैं वो क्या है और किस से मांग रहे हैं. जी शुरू कीजिए समय जी. जी जी आप पढ़ें और ये पीछे पढ़ेंगे. चलिए अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि ये इल्म की महफिल में जो दुआएं हम मांगते हैं ये कबूल भी हो जाए. आपको पता है कि दुआओं की जो कबूलियत है उसमें नेकी के काम के दौरान जो दुआएं मांगी जाती हैं वो भी होती है. तो अल्लाह ताला इस वक्त चूँकि हमारे ईमान के मुताबिक इस जगह को फरिश्तों ने घेरा हुआ है, किस किस को इस बात का यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और किस किस को इस बात का यकीन है कि सारे समंदरों की मछलियाँ आपके लिए दुआएँ कर रही हैं. किसी बुज़ुर्ग ने किसी के पूछने पर कि सबसे उठकर सबसे पहले सुबह उठकर क्या काम करते हो, तो उसने कहा अल्लाह की मखलूक को काम देता हूँ, काम पे लगाता हूँ. उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप अल्लाह की मखलूक को काम पे लगाते हैं? तो वो कैसे? कहा कि मैं उठते ही इल्म का एक बाब पढ़ता हूँ ताकि सारी मछलियाँ सारे परिंदे और जो भी मखलूक आते हैं वो मेरे लिए दुआएँ करनी शुरू हो जाएँ. तो पूरे शऊर और यकीन के साथ यहाँ आया करें. रास्ते में भी पूरा वक्त आपका इबादत का है. जब आप घर से निकल आते हैं ना तो आप आ चुके होते हैं फरिश्तों के हिसार में. दुआएं पढ़ते हुए ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ प्ले कीजिए, तिलावत सुनते हुए सुबह शाम की दुआओं को सुनते हुए आए. फालतू बातें ना करें और फ़ोन तो बिल्कुल ना यूज़ करें बीच में एक दूसरे को. ये अब सब अपने आप के साथ ये अहद करें कि हमने फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करना है. जब हमारे फ़ोन लंबे चौड़े चलने लगते हैं ना, तो हमारा अंदर का रब्ता कमज़ोर होता है। और ख़ास तौर पे फिर हम ये सोचें, फिर सारा दिन तो वक्त नहीं मिलेगा, पाकिस्तान और इंडिया में तो रात हो जाएगी जाने तक, तो फिर ऐसा करते हैं, अब जाते हुए एक कॉल कर लेते हैं, वक्त का भी नहीं पता चलेगा। याद रखें कि अगर आप में से कोई सुबह से अभी तक कोई अपने बैक होम फ़ोन पे बात करके आया है, तो मैं कह सकती हूँ कि उसका क्लास में फोकस कम रहेगा, क्योंकि हमारा दिल खुशी से भी मुतासिर होता है, गम से भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है। तो ये जो सुबह का वक्त है ना आपका, ये इसके लिए है। इसी तरह मैं उन सारे स्टूडेंट्स से जो इस वक्त भी माशाल्लाह घरों से सुन रहे हैं, आप सबको भी यही कहूँगी। आप कहते हैं कि इस वक्त हमारे साथ माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड डिफरेंट जगहों से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और मैं उनको बिल्कुल ऐसे ही महसूस कर रही हूँ कि वो इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं। आपके मेरे पास तो भी सुबह है ना, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, वाइज़ गदाउ तमिन अहली का पे अमल हो गया, लेकिन ख़ास तौर पर इंडो पाक में इस वक्त रात हो गई है। उन सारे साथियों से मैं ये कहूँगी कि जो सारे दिन की मसरूफियात और भाग दौड़ के बाद अब इस वक्त यहाँ आकर बैठ गए हैं, अब अपना हक लीजिए। अब इस वक्त बीच में किसी को खाना सर्व करना और किसी की कोई खिदमत करना, ये नहीं है। ये 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो आपने मांगे हैं, इसको पूरे के पूरे दें। ये पूरे दिन की थकन दूर करेगा, और इंशाल्लाह ताला इस रस्तों में हम चलते जाएंगे। अब चलते हैं हम कल के सेशन पे। कोई बात, कल के सेशन में से जो आपके जहन में उलझन पैदा कर रही हो तो आप पूछ सकते हैं, और क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे। हमने इस ज़रा कैलेंडर को खोल लीजिए, आज की वर्कशीट देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि कल आपके चेहरों पे जो दुख और दर्द के तासुरात थे, और क्या लिखूँ और क्या छोड़ूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की शीट में आपके लिए रेफरेंसेस डलवा दी हैं। आज लिखनी बातें आपने रेफरेंस मौजूद हैं। ये याद रखिए कि ये सारी जो मेहनत और कोशिश होती है ना, ये हमें इस बात का तो यकीन दिलाती है ना कि वी आर इम्पॉर्टेंट एंड वी आर डूइंग समथिंग स्पेशल। हमने आज तक मेहनत की है तो बहुत दुनिया के चीज़ों में की है, लेकिन आखिरत के मामले में जो मेहनत है, ये इंसान को वाकई रातों को जगाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे इंसान की ज़ाती कई चीज़ें पीछे पड़ती हैं, लेकिन यही चीज़ तो फिर कल हमें अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू भी करेगी। ठीक है, तो उतनी देर में इस शीट को गो थ्रू कीजिए कि हम लोग अपने इस एम्बेसडर ऑफ इस्लाम के चार्ट में कहाँ हैं। मैं दोहराती हूँ चंद जुमलों में, आप अपने जहन को साथ साथ रखेंगे, और फिर जूँ ही आप ये सारा कुछ पढ़ते और सुनते जाएंगे, तो उसके साथ ही फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम लोग अब किधर खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक नक्शा बनता है। अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ सुन रहे होंगे, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ लिसनर्स को वो फ़ायदा नहीं होगा इस कोर्स से, जो स्टूडेंट्स को होगा। वजह क्या है कि कोर्स बहुत इंटेंसिव है। एक होती है मीठी मीठी बातें, और आप बैठे दर्स सुन रहे हैं और कर रहे हैं, इट्स ओके, साथ काम भी किया, बर्तन भी धो लिए, इस्त्री भी की, इट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो बैठकर हाथ में कागज़ कलम लेकर, और सबसे बड़ी बात है फिर एंड पे आप एक उसकी असाइनमेंट करेंगे कि जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या पाया, यकीन करें वो लोग तो इस 1 महीने के बाद अपने आप को इतने अमीर समझेंगे कि हो सकता है खुद को किसी लॉकर में ही रख दें। क्या मैं बहुत कीमती हो गई हूँ? क्योंकि हमारी आदत है हम कीमती चीज़ें लॉकरों में रखते हैं, और अपनी सोने चांदी से ज़्यादा कीमती औलाद और ऐसी चीज़ें सड़कों पे पड़ी रहती हैं। लेकिन बहरहाल वापस करते हैं इस बात को कि सुन के लिखिए। ये कोर्स ख़ास तौर पे सिर्फ चलते फिरते सुनने वाला नहीं है, और स्पेशली ये पार्ट जो इस वक्त हम शुरू करें, मैं खुतबे के साथ शुरू करती हूँ, पिछली चीज़ों को साथ लेते हुए रिकैप, आपका भी जहन बन जाए, और हो सकता है कुछ साथियों ने आज ही ज्वाइन किया हो, माशाल्लाह दिन रात ऑनलाइन पे ज्वाइनिंग हो रही है, तो उन सब की मोहब्बत में मैं ये चीज़ सामने रखूँगी। शुरू करते हैं, आप लोग भी सारी बात को अपने पास लिख लिया करें, यानी हर दिन के नोट्स के शुरू में पिछले दिन का खुलासा। ठीक है, चलिए, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस्लाम ए टू ज़ी, रूट टू फ्रूट, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारा तीसरा सेशन है। अभी तक जो बात हमने सीखी है, ज़रा सा उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लफ्ज़ इस्लाम को, कि इस्लाम है क्या। फिर हमने ये देखा था कि इस्लाम के दो बुनियादी हिस्से हैं, एक है हकूकुल्लाह का और एक है हकूकुल इबाद का। फिर हमने उसके बाद तीसरी चीज़ देखी थी कि हकूकुल्लाह के फिर दो हिस्से हैं, अकायद और इबादात, और हकूकुल्लाह की भी दो ही शाखें हैं, एक है मामलात और एक है अखलाकियात। ये हैं वो चार बुनियादें, फोर फाउंडेशंस ऑफ इस्लाम, जिसके ऊपर इस्लाम की बुनियाद खड़ी होती है सिर्फ, और उसके ऊपर फिर बाद में कई मंजिला इमारत बनती है अमल सालेह की। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं हकूकुल्लाह की पहली किस्म अकायद, और अकायद में हमने अपने डे टू में लफ्ज़ अकीदा से बात शुरू की थी, और वो क्या था? नंबर एक, अकीदा अल्लाह और बंदे के बीच का अकद है, जैसे निकाह में दो इंसानों के बीच में गिरा लगती है। नंबर एक, सच्चाई के साथ दोनों मुखलिस हैं, घर बसाने का इरादा है, एक दूसरे की हत्तुल बसा खुशी का और उनकी अल्लाह की रज़ा में रहते हुए रज़ा का ख्याल होगा। इसी तरह अकीदे में भी अल्लाह और बंदे के बीच में ये बात है। अल्लाह तो अपने वादे पूरे कर चुका, उसने तो हमें पैदा कर दिया, लेकिन एक इंसान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए अपने आप को इस चीज़ के काबिल कर लेता है कि मैं अपने रब की हर बात को मानूंगा और जो जो चीज़ उसने मेरे ऊपर फ़र्ज़ की मैं उसको मान लूंगा। जब ये बात होती है नंबर एक, तीन चीज़ों में ईमान क्या है, नंबर तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, तस्दीकुम बिल कल्ब, वेरीफिकेशन बाय हार्ट, दिल से यकीन है कि जो कह रही हूँ या कह रहा हूँ वो सच है। फिर इकरारुम बिल लिसान, जुबान के साथ उसका इकरार किया जाता है, जिसको आप और मैं अपनी ज़ुबान में शहादा देना कहते हैं, जो अमूमन मस्जिदों में उस वक़्त दी जाती है जबकि दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ पे इस शख्स का इस्लाम पूरा हो गया, अब इसने कलमा पढ़ लिया और बात पूरी होगी। नहीं, अब तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक, जो पहली दो के बाद, पहली क्या थी? तस्दीकुम बिल कल्ब, सबसे पहले बंदा दिल से मुसलमान होता है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत आने लगती है, फिर इतनी वो मोहब्बत बढ़ जाती है, इल्म का पानी पड़ता है, कुछ सीखता है, इससे पूछ उससे पूछ, कि एक दिन कहता है मुझे शहादा देनी है। जिस दिन वो शहादा देता है तो वो इस्लाम की दूसरी सीढ़ी पर आ जाता है। उस वक़्त उसने आके सबको बता दिया कि आज के बाद तुम मुझे 5 वक्त मस्जिदों में देखोगे, आज के बाद तुम मेरे हाथ में शराब नहीं देखोगे, और आज के बाद तुम मुझे हराम की तरफ कभी भी मुड़ता हुआ नहीं देखोगे। ये सारे दावे करने का नाम है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब बंदा ये कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो असल में वो कहता है कि अब क्या दीन है, क्या इस्लाम है, क्या नेकी क्या है, कितनी है और कब करनी है। ये तीन काम रसूल के ज़िम्मे होते हैं। पहले दिन के इंट्रो लेक्चर में हम सुन चुके हैं इस बात को। तो लिहाजा वो फिर उस वक़्त जब कलमा पढ़ता है तो ये दावा कर रहा होता है कि मैं इंशाल्लाह अब इस बारी सारी बातों को मानूंगा। इसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है वो अमल बिल जवारह है। अमल बिल जवारह असल में फ्रूट्स ऑफ ईमान है, वो इस्लाम का फल है। कोई दिन रात नमाजें पढ़ता रहे, दिन रात अल्लाह अकबर की तस्बीहात रखे हाथों में, लेकिन अगर नमाज के वक्त पे उठकर नमाज ना अदा करे और इसी तरह गलत जगह हो और उठ ना जाए वहाँ से, तो गोया के फिर अमल बिल जवारे उसका फेल हो गया। ये ऐसे ही है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने तक तो कोई बहुत अच्छा केयरफुल ड्राइवर रहे, लेकिन जो ही स्टेयरिंग हाथ में आए तो इधर गाड़ी ले जा उधर ले जा, नुकसान क्या होगा कि ऐसा शख्स फिर सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करता, दूसरों का भी करता है। तो फिर इस्लाम क्या है? तीन चीज़ों का मजमुआ है, दिल की तस्दीक, जुबान का इकरार, अमल जवारे। पहली ना हो तो भी इस्लाम नहीं है, इसको कहते हैं निफाक। आज पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, ये अब्दुल्ला बिन उबई में था, दिल में इस्लाम नहीं था लेकिन वक्ती हालात के तकाजे से, जिसको आप कह लीजिए कि उसको लग रहा था कि मुसलमान होकर जो नुकसान दे सकता हूँ वो बग़ैर मुसलमान हुए नहीं दे सकता, तो वो भी इस्लाम ठीक नहीं है। दिल में इस्लाम हो, सच्चाई उसकी मुंह पे ना लाए, तकब्बुर और अकड़ के मारे कि हूँ मैं क्यों मुस्लिम बनूँ, तो वो भी इस्लाम नहीं है। अबू जहल उसकी मिसाल है, दिल से कहता था आप सच्चे हैं, मुंह पे आके नहीं कहा। और बाकी रह गई बात, दिल में भी सच्चाई है, जुबान पे भी इकरार है और अमल बिल जवारह में कमी है, तो ये है आज का मुसलमान। और अगर अमल बिल जवारह में सॉलिड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं तो वो थे सहाबा कराम, जिसको हम इस सेशन के दूसरे हिस्से में आजकल देख रहे हैं, अशरह मुबशरा की सूरत पे। आप में ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें इस बात का यकीन हो। फिर दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी कि जैसा अकीदा होगा वैसे ही अमल होंगे। अकीदे की गिरह जितनी मजबूत होती है उतने ही आमाल पुख्ता होने लगते हैं। जैसे सर में ब्रेन है या जिस तरह बिल्डिंग की फाउंडेशन है, ये स्ट्रांग होगी तो बाकी काम भी सारे के सारे दुरुस्त होंगे। फिर हम अभी तक जो चीज़ पढ़ चुके वो ये पढ़ चुके कि सिर्फ इस्लाम ही अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। जैसे किसी मुल्क में असली नोट ही एक्सेप्ट किया जाता है, नकली नोट कैसा भी क्यों ना हो, कोई गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। क़यामत के दिन भी इस्लाम काम आएगा। और अभी तक दुनिया में जितने अम्बिया कराम भेजे गए वो सब मुसलमान थे, इस्लाम की दावत देते थे और उनके फॉलोअर जो थे इस्लाम को कबूल किए हुए थे। फिर हमने अगली चीज़ जो अभी तक देख ली अल्हम्दुलिल्लाह वो है दीन इस्लाम के दर्जात। तीन दर्जे, इस्लाम, ईमान और एहसान। इस्लाम क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी अभी बात हो गई। इस्लाम की कितनी बुनियादें हैं? पांच हैं। और पांच बुनियादों में शहादतैन, नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। दूसरी सीढ़ी ईमान है। और हमने ईमान के बारे में तकरीबन 20, मेरा ख्याल 22 पॉइंट्स पढ़े थे, किसी को याद है नंबर? 22 पॉइंट्स हम ईमान के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, कि जिसका खुलासा क्या है कि ईमान एक स्टेगनेंट चीज़ नहीं है। ईमान एक खड़ी हुई मुर्दा पत्थर वाली चीज़ नहीं है। ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है। और फिर हमने इसमें ईमान बढ़ाने के तरीके भी देखे थे कि जितना अल्लाह और उसके रसूल के करीब होते जाएंगे, उनके बारे में गौर व फिक्र करते जाएंगे, कायनात पे गौर करेंगे, दुआएं मांगेंगे, इबादत की कसरत होगी और हक बात पे एक दूसरे को थमाए रखेंगे, उतना ईमान में इजाफा होगा। वो 22 पॉइंट्स आप कैसे लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने ईमान में कमी के असबाब भी देख लिए कि ईमान में कमी जो है वो दीन से एराज करने में, गफलत बरतने में, नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करने और ख़ास तौर पे बुरी, फिर दुनिया की मोहब्बत और उसकी जीनत के पीछे ही भागते रहना, शैतानी कामों में जितना भागते जाएंगे उतना ईमान कमज़ोर होगा। फिर हमने इस्लाम और ईमान का फ़र्क भी देखा था। फिर नोट कर लीजिए, इस्लाम इज़ आउटर लेयर और ईमान इज़ इनर लेयर। हमारी भी तो जिस्म की दो ही हिस्से हैं ना, बाहर एक आपका मेरा हमें एक दूसरे को दिख रहा है, एक हमारा इनसाइड है। जाहिर हो सकता है कि हम बिल्कुल ठीक लगे लेकिन जिस्म में कोई बीमारी हो। समटाइम जिस्म में बीमारी होती है, बाहर से नहीं लगती। तो इस्लाम अपेरेंट थिंग्स हैं, इसका ताल्लुक ज़्यादा इबादत के साथ है, लेकिन ईमान दिल की कैफियत का नाम है और दोनों का आपस में रब्त भी है। फिर हमने पढ़ा था ईमान की कितनी शाखें हैं, बोल दीजिए ईमान की कितनी शाखें हैं? बेदा वतिसून 62, 62 शाखें। ब्रांचेज ऑफ ईमान आर आलमोस्ट 62। और हया भी ईमान की अलामत है। ये बताइए कि सबसे आखिरी छोटी से छोटे ईमान की अलामत क्या है? इमादत अल अज़ाई अन तरीक, रास्ते से ना का गलत ख़राब चीज़ को हटा देना। फिर ये बताइए कि ईमान के अरकान कितने थे? छः। कौन से? सब बोल दें मिलके, सब बोले, जो घर से सुन रहे हैं वो भी बोलें। जी जी शाबाश। ईमान बिल्ला, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रसुल, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल आखिरा और ईमान बिल कद्री, खैरी ही व शर्री ही मिन अल्लाह। ठीक है, इसमें से हमने एहसान को थोड़ा सा स्किप किया था लेकिन कुछ बात की थी। एहसान इज़ द एक्सीलेंसी। अब ईमान की जो बहस है उसमें सबसे पहली चीज़ थी शहादतैन। पहली बुनियाद ईमान की क्या थी? आप ये रब्त नहीं रखेंगे ना तो आप एंड पे फिर कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो ईमान की पहली शर्त थी शहादतैन, जिसको आप और मैं कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के सेशन के एंड में हम कलमे की इन दो शिकों को तफसील से देख चुके कि जब आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो क्या मुराद है, और ईमान कलमे की शरायत कितनी है। इतना सोच में पड़ गए, आठ शरायतें कितनी आई हैं, जरा सब मिलके पढ़ें। अल इल्मु वल यकीन, उस तरह पढ़े जैसे सुना था। हाँ, यकीन, कबूलु, इनकियाद, सिदकु, इखलासु और हुब्बे रसूल और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह और उसके अल्लाह के माँ सिवा हर चीज़ का कुफर। ठीक है, और जो शरायत ला इलाहा इल्लल्लाह की हैं वही शरायत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने की भी हैं, यानी दोनों में कोई शक नहीं है। फिर नबी सल्लम पर ईमान लाने के हमने मानी देखे थे कि सिर्फ जुबान से नहीं अमल से भी हम ये साबित करते हैं कि अल्लाह के नबी पूरा दीन देकर गए और आपने इस्लाम को मनोअन पेश किया। कैसे पता चले कि आपको नबी सल्लम से मोहब्बत है या अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा सच्चा है? तो उसमें हमने फिर आपसे मोहब्बत की अलामतें देखी थी। कोई अलामत बोल दीजिए सब मिलकर। कसरत से आपका तذکرہ करना, आपसे मुलाकात का शौक, शाबाश, यानी आपके अखलाक को मन जी बिल्कुल। तो ये किताब में से ढूंढनी है ना, अपने अंदर से तो नहीं ढूंढनी हमने। क्या हम नबी से मोहब्बत की अलामतें किताबों में ढूंढेंगे? अपने अंदर देखेंगे। इस पर एक पूरी बुक है, नबी सल्लम से मोहब्बत की अलामतें और उसके समरार, डॉक्टर फजल अली साहब की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी बुक पढ़ी भी हुई है, रिकॉर्डिंग्स उसकी मौजूद हैं। बहुत सिंपल किताब है। रबीउल अव्वल में अगर आपकी वो दोस्तें हैं जो वाकई कुछ करना चाहती हैं ऐसे मौक़ों पर, तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस मौजू को अपने साथ यानी दूसरी दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए मोहब्बत छुपती नहीं है, कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपता नहीं है। तो अल्लाह के नबी से अगर मोहब्बत होगी तो इंशाल्लाह उन अलामतों की रोशनी में हम उसको देख लेंगे। अब इसके बाद हमने जो बहुत डिटेल से देखा था वो तौहीद को देखा था कि एक अल्लाह को एक मानने का मतलब क्या है, किस तरीके से अल्लाह ताला पर ईमान लाकर इंसान सबसे बेनियाज हो जाता है। अकीदा तौहीद की हमने अहमियत देखी। आपको यकीन आ रहा है ये सब कुछ हमने सिर्फ 2 दिन में देखा है, यानी वाकई है ना समंदर को दरिया में बंद करने की नाकाम कोशिश, मैं तो नाकाम कहूंगी, इल्ला ये कि जितना हमारे नसीब में हो। ये बताइए कि तौहीद की कितनी किस्में हैं जी आप? 3 किस्में। शाबाश। पहली किस्म, हाथ खड़ा करें, आपको बोलेगा नहीं जी। आप निशात? तौहीद रबूबियत। दूसरी किस्म जी आप पीछे से? मुबीहा। तौहीद अलूहियत, ठीक है। तीसरी आप बताइए? तौहीद अस्माओ सिफात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तौहीद रबूबियत की कितनी किस्में हमने पढ़ी हैं? किस्में नहीं पूछ रही, कितनी? हाउ मैनी, यानी अल्लाह को रब कहने के डिफरेंट क्या एंगल थे, कितने थे? पीछे से भी सब सब हाथ खड़ा किया करें जी आप जी। 22 सिफात पढ़ी थी, 22 सिफात पढ़ी थी हमने। तौहीद अलूहियत को हम ज़्यादा पढ़ेंगे जाकर इबादात के ज़िमन में, लेकिन उसका भी खुलासा यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई उसकी सिवा इबादत के लायक नहीं। ये बताइए कि तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह के नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स कितने हैं? ऑलमोस्ट अल्लाह ताला के नाम और उसकी खूबी सब नहीं बोलेंगे जी आप? अच्छा, ये हाथ भी खड़े करते हैं और बोलते भी हैं, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। ज़रा अपने स्कूल का नाम लिख के दे जाइएगा आज, जहाँ से आपने इतनी आला तालीम ली है वहाँ। तो मैंने सुना है सारी बोलते भी किए हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, तो बहरहाल अगर हाथ खड़ा कर रहे हैं तो बोलिए नहीं। अल्लाह ताला की 2-3 सिफात बताइए जो आपने अस्माउल हुस्ना में नहीं पढ़ी हुई लेकिन कल मैंने मेंशन कर दी थी, कोई ऐसा जी? आप पीछे से, शाबाश। अल्लाह मुस्कुराता है तो आप भी मुस्कुरा दें, मुस्कुराएं सब एक दूसरे को देख कर। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करता है अल्लाह ताला जी? आप पीछे से जी आप। अल्लाह ताला राज़ी होते तो आप भी राज़ी हो जाए, बैठे बैठे के एक दूसरे से मैं तुमसे राज़ी हूँ, राज़ी है। चलिए अब घर जाके उनको भी कह दीजिएगा जिनसे नाराज़ थे, ये मुश्किल है, ये क्लासरूम में जो करा लें वो ठीक है, घर जाके मुश्किल है। और कोई अल्लाह ताला की सिफत? पीछे से आप, थर्ड रो के फर्स्ट में आप। आपका नाम क्या जी? लुबना। अल्लाह ताला कलाम फरमाता है, शाबाश जी। नेक्स्ट आप जी। अल्लाह सुब्हान ताला मोहब्बत भी करते हैं जी। वहीदा आप। अल्लाह सुब्हान ताला आसमान दुनिया पे आते हैं। इतना कुछ अपने रब के बारे में पढ़कर फिर दिल चाहता है ना कि उसकी बात को पढ़े। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे लफ्ज़ तागूत से। तागूत के साथ आज की बात क्यों शुरू होगी? अभी आपकी शीट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और आप सबको ही पता है कि आपके यहाँ शीट लेने के क्राइटेरियन में ग्रे स्कार्फ है। सब ग्रे स्कार्फ वालों के सामने शीट्स आ जाएंगी अभी, और आप में से जो है स्टूडेंट लेकिन आज ग्रे स्कार्फ नहीं लेके आया तो वो थोड़ा सा सैड फेस बनाकर उनसे शीट की रिक्वेस्ट कर दें। इस वीक आपको बगैर स्कार्फ के भी शीट मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक से नहीं मिलेगी। वजह कितनी सख्ती कर रहे हैं ना हम लोग, नूरुल कुरान वाले भी सख्त हो गए। आज आप पढ़ेंगे सख्ती क्या होती है। आज मैंने आपको उम्र के बारे में पढ़ाना है, तो मैं जिनके बारे में पढ़ाना चाहती हूँ ना, मैं उन्हीं को ये सोच रही होती हूँ कि इस्लाम को इनकी कितनी ज़रूरत थी। कल अबू बकर सिद्दीक के बारे में पढ़ा पढ़ाया, आज इनका पढ़ना है, तो मैं वाकई इस चीज़ का कि पूरे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कायल हो गई कि आप में से हर एक की इस्लाम को ज़रूरत है। जैसे इस बिल्डिंग में सीमेंट भी लगा, चूना भी लगा, पत्थर भी लगा, लोहा भी लगा, शीशा भी है, प्लास्टिक भी है, आप सबके पास मुख्तलिफ खूबी हैं माशाल्लाह। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, ओवर एस्टिमेट भी ना करें कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, दिस एंड दैट। आपने बस करना क्या है, आज इंशाल्लाह जब उस वक्त पहुँचेंगे उमर फारूक पे एक यू टर्न लेना है। यानी अगर आप कभी हिंट दे दूं कि उमर फारूक कौन थे, ही टुक अ यू टर्न, उनकी ज़िंदगी में एक अपसाइड डाउन हुई थी इस्लाम कबूल करते ही। तो कोई पहले से बहुत अच्छे सोच का होता है, किसी का घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, किसी की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई होती है, कुछ की बिल्कुल नहीं हुई होती। तो इंशाल्लाह इस दीन में हमने इसी चीज़ को समझना है। चलते हैं वापस लफ्ज़ तागूत पे। अभी चंद बातें मेरे से ज़ुबानी नोट कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप अपने पास वो शीट से गाइडलाइन लेते हुए करते जाएंगे। देखिए, जब हम अल्लाह के बनना चाहते हैं, आप बनना चाहती हैं, तो एक रेजिस्टेंस आती है, फ्रिक्शन फोर्स। तागूत इज़ फ्रिक्शन फोर्स। आप अल्लाह के बनना चाहते हैं, सोसाइटी कहती है हमारे बनो। आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, सोसाइटी नाराज़ हो जाती है। किसी बात पे सोसाइटी खुश होती है अगर, तो अल्लाह नाराज़ होता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। आप लोग तिलावत सुना सकते हैं आयतुल कुर्सी से लेकर अगली चंद आयतों की। आज का जो हमारा सेशन है बुनियादी तौर पे इन आयतों से शुरू हो रहा है। किस तरह अल्लाह सुबहाना ताला हमें तागूत से बचने का हुक्म देते हैं। आप इस तिलावत को जज्ब करेंगे, अपने अंदर उतारिएगा, क्योंकि इसका तर्जमा आप में से 99% लोगों को आता होगा। और अगर हम शुरू कर लें 252 आयत से, 252 से नहीं, बल्कि आप ऐसा कीजिए 254 से कीजिए, आयतुल कुर्सी से एक आयत ऊपर। आपका काम क्या है, अभी तिलावत चलेगी, आपने एक एक लफ्ज़ पर डूबना है। और आप इसको तो कुरान की तफसीर में से नहीं, बल्कि आप अभी तक जो सुन चुके हैं अल्लाह ताला के बारे में, ख़ास तौर पर आयतुल कुर्सी में से, आपने आपकी एक्टिविटी है, आपकी असाइनमेंट में आएगी ये बात कि आपने अस्मौल हुस्ना नोट करने हैं इसी वक्त सुनते हुए कि अल्लाह के कितने नाम और एट्रीब्यूट्स हैं। फारिग वक्त में क्या करना है, गौर व फिक्र, दुआ, और जितना आपको खामोश रहने की आदत होगी ना, उतना गौर करेंगे, और गौर करेंगे, तदब्बर करेंगे, हिकमत आएगी। हर वक्त बोलने से या हर वक्त सुनने से हिकमत नहीं आती। ज़िंदगी का ये असूल बनाइए अपने लिए। क्योंकि ईमान की बहस पढ़ चुके हैं, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होगी तिलावत, तो उस वक्त आपने अपने आप को सोचना है कि आपको कहा जा रहा है। और जहाँ अल्लाह सुब्हान तआला की बात आएगी, तो वहाँ ये सोचना है कि कितनी बड़ी हस्ती है जो मुझे पुकार रही है। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए सेटिंग उतनी देर में। चलिए एक काम करते हैं, सबके सामने टेक्स्ट खुला हुआ है, आयत 254 से मिलकर पढ़िए, सब पढ़े एक साथ, मुसहफ साथ रखा करें। ये फ़ोन में मुसहफ आज चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। किसी भी सूरत में फ़ोन को अवॉइड कीजिए, ये चीज़ इंशाल्लाह हमें ज़्यादा फोकस्ड करेगी। जी पढ़िए मिलके सब ऊंची आवाज से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء
चलिए अब सुनिए, साथ पढ़िए और अब आप लोग साथ पढ़ सकते हैं दोबारा। कारी साहब के साथ पढ़ेंगे तो उसे आपका एक्सेंट भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। साथ पढ़िए। तो यहाँ देखिए कि हमने पहले तो अल्लाह ताला की एक पुकार देखी। अगर आयत 245-4 पे जाएंगे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल ला बय्युन फीही वला खुल्लतुम वला शफ़ातुम वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून। अगर आप इसके तर्जमे को समझ रहे हैं तो अल्लाह ताला की पुकार थी ईमान वालों को कि उस दिन के आने से पहले जिस दिन कोई ख़रीदो फरोख्त और तिजारत या कोई सिफारिश काम नहीं आएगी न दोस्ती, तो आज खर्च कर लो। उसके बाद देखिए कि आयतुल कुर्सी है 255। आप में से कितने लोग नोट कर सके इसमें अल्लाह के असमाल हुसना, कितने की है? सिर्फ नंबर बता दें। 25 नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं सिर्फ एक आयत में। शायद यही वजह है कि जिसके वजह से शैतान इसकी ताब नहीं ला सकता। अब जब अल्लाह ताला की बात समझ गया, अब आइए अगली आयत में। मैं थोड़ा सा इसको खुलासा कराती हूँ आपको आगे लेके जाने से पहले। अल्लाह ने अपना तारुफ करा दिया, अपनी खूबियाँ बता दी, अपनी सिफात बता के फिर क्या कहा? ला इकराह फिद दीन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है दीन में। किस बात में? किसी को दीन में लाने में। ये नहीं कह दिया कि दीन में आकर अपनी मर्जियां करो, यानी आप में से किसी को फोर्स नहीं किया गया कि आप इधर आए, लेकिन अब आ गए तो आपको कुछ बातें तो माननी पड़ेंगी ना। तो मुराद है कि ज़बरदस्ती जबर के साथ किसी को मुसलमान नहीं किया जा सकता। क्यों? वजह आप कह सकते हैं करनी चाहिए थी ज़बरदस्ती, ये तो चीज़ ही इतनी प्यारी है, ये तो इंसानियत के हर दर्द और दुख की दवा है, तो उसका जवाब दिया जा रहा है इसलिए कि कत्तबैना रुश्द मिनल गई, हमने तो रुश्द को गुमराही से अलग कर ही दिया। यानी एक मैनिफेस्ट ट्रुथ है ये इतनी बड़ी हकीकत है कि इस्लाम और अल्लाह का वजूद और दीन को अल्लाह की मर्जी से के साथ कबूल करना, ये इतना बड़ा रुश्त और भलाई का काम है कि ये तो बच्चे को भी पता है। इसमें असल में इशारा है बच्चे के माँ के पेट से जो फितरत की पुकार लेकर आता है उसकी तरफ, और सारी दुनिया बोल बोल कर बता रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब क्या करना है? सवाल पैदा होता है कि जब ये इतना अपेरेंट है, सूरज निकला हुआ है, पत्ता पत्ता घास तिनका सब कुछ नजर आ रहा है, फिर क्यों बहुत सारे लोग अल्लाह की तरफ नहीं आते? तो उसका जवाब फमई यकफुर बिताहूत, इसको हाईलाइट कीजिए। ये है अब आज हमारे आज के सेशन की पहली थिंग टू रिमेम्बर, फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर, पहली चीज जिसको आप याद रखेंगे कि हर बंदा मुसलमान हो चुका होता, हर बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार पे लब्बाई कह देता अगर रस्ते में तागूत ना होता। बात समझ गए? हर बंदा अल्लाह का बंदा बन चुका होता, लेकिन अल्लाह का बनने से पहले तागूत का कुफर करना पड़ता है। अभी तो तागूत को नहीं छेड़ रही मैं, आपको सिर्फ समझा रही हूँ इसकी अहमियत। क्या पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले यकफुर बित्तागूत है। कल भी जुमला बोला था कि ला की तलवार से सारे तागूतों का सर कलम करेंगे, फिर इल्लल्लाह समझ आएगा और फिर वयूमिन बिल्ला, फिर अल्लाह पर ईमान होगा। जिसने ये कर लिया, लुक लुक एट दिस, दिस इज अ सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है कि अल्लाह पर ईमान लाने से पहले सारे तागूतों का अगर इनकार कर दिया तो फकद इस्तमसका बिलुरवतिल वुस्का, तो बेशक उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। कैसा है वो? लन फिसाम लहा, जो कभी भी नहीं टूटेगा उसके लिए। वल्लाहु समीउ अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। यानी उरवतिल वुस्का इधर किसको कहा गया? मजबूत कड़े को, सहारे को, इस्लाम को। यानी जब एक पहला काम बस करना मुश्किल होता है और वो क्या है? यकफुर बिताग़ूत। उसके बाद फिर इस्तकामत भी आती है। एक दफ़ा इस्लाम को कबूल करके कोई छोड़ता नहीं है, ये तो आज का मिथ है, एक्स मुस्लिम स्टोरीज, ये भी एक प्रोपेगंडा आज के दौर का। वो लोग पहले मुसलमान हुए फिर इधर आ गए तो आए उनकी स्टोरी सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जब अबू सुफियान ने हिरकल के दरबार में दी थी वो ये थी, हालांकि वो खुद उस वक़्त इस्लाम पे नहीं थे, कि एक दफ़ा जो उसकी पुकार पे लब्बाई कह देता है वो वापस नहीं आता। और इसी बात पे तो कुफारे मक्का परेशान थे कि ना ये ड्रामों से डरते हैं ना रगबतों की इनकी उम्मीद है, यानी इनको मारो, इनको रेत पे लिटा दो, इनके साथ जो भी मामला करो, ये छोड़ते नहीं है एक दफ़ा इस्लाम को लेके। ये है लन फिसाम लहा। ये दुआ करें कि एक दफ़ा इस इस्लाम की सच्चाई दिल में आ जाए। बड़ा ही बदनसीब होगा कि जो हिदायत की तरफ आकर पलटे। अब आगे इसका सफ़र अगली आयत में, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। ये क्या होता है? ये आज के सेशन में हम इसकी भी डिस्क्रिप्शन लेंगे कि अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। जब अल्लाह किसी का दोस्त बनता है तो क्या करता है? आप सोचिए दुनिया के दोस्त क्या करते हैं। अमूमन पहला सिगरेट दोस्त पिलाता है, पहली ड्रिंक की आदत दोस्त ने दी, फैशन की पहली चोट सहेली ने दी। आम तौर पे दुनिया में अगर हमारे दोस्त अल्लाह और उसके रसूल से ना जुड़े होना तो वो हमारे या हमारे बच्चों के दीन से दूर होने का जरिया बनते हैं। इसके बरक्स जब अल्लाह किसी का दोस्त बनता है, युख्रिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूर, वो उनको अंधेरों से रोशनियों में लाता है। पहली अंधेरियां कुफर की, जहालत की, दुनियादारी की, गुनाहों की, और इसकी अमली मिसाल आज हम हज़रत उमर फारूक की सूरत में पढ़ेंगे, कैसे अल्लाह ने उनके हाल पर रहम किया और अंधेरे दिल को रोशन कर दिया। इसके बरक्स ऑपोजिट क्या है? वल्लज़ीन कफरू औलियाहुम अत्तागूत, जो लोग काफिर हैं, डिनायर हैं, डिसबिलीफ है उनका, वो कौन है? उनके दोस्त अल्लाह नहीं बल्कि तागूत है। कोई कि यहाँ फिर तागूत की बात आ रही, तो दैट मीन इज समथिंग डेंजरस। अल्लाह के मुकाबले में यहाँ लफ्ज़ आ रहा है तागूत का, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्या करता है ये तागूत अपने दोस्तों के साथ? युख्रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़ुलुमात, रिवर्स एक्शन। ज़रा ज़िंदगी में हिदायत का, कुरान का नूर आने लगे तो ये इसको किसी और चीज़ की तरफ ले जाकर उससे दूर कर देता है। नुकसान क्या होगा? वलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये आग में रहने वाले होंगे जिसमें ये हमेशा रहेंगे। ज़िंदगी में भी अंधेरे आए और कायनात की सबसे अंधेरी जगह यानी जहन्नुम में ये लोग दाखिल कर दिए जाएंगे। तो इन दो आयतों में हमने लफ्ज़ तागूत को समझा है। आइए देखते हैं कि तागूत है क्या चीज़। अगर आप इसकी असल देखें तो तोए गैन या तगा, उर्दू में हमारे यहाँ बोलते हैं तुगियानी, दरिया तुगियानी में आ गया, ओवरफ्लो होता है, सरकशी, हर वो फोर्स कुव्वत ताकत जिसकी वजह से अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया जाए। तागूत से मुराद हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह ताला को छोड़ कर इबादत की जाए, इसकी फरमा बरदारी की जाए। ये क्या क्या हो सकता है? तीन चीज़ें। नंबर एक बुत, जो उस दौर में बुतों की सूरत में थे। नंबर दो शैतान, और नंबर तीन इमाम हो या अपना नफ्स, यानी इंसान अपना तागूत खुद भी हो सकता है। और इस पे एक कॉल है अबू बकर अल जज़ायरी का, कहते हैं कि हर वो चीज़ जो अल्लाह की इबादत से फेर दे, ख्वाह वो इंसान हो या शैतान, और इन दोनों के अलावा कुछ भी हो। तो सीधी सी बात है, ये कोई इंसान भी हो सकता है हमारे करीबियों के सूरत में, ये कोई नज़रिया भी हो सकता है, ये मुल्क को, कोई हुकूमत, कोई कानून भी हो सकता है। हर चीज़ जो आपको शैतान से करीब और अल्लाह ताला से दूर कर दे। और कहते हैं कि तागूत बहुत सारे हैं लेकिन इसके सरदार पांच हैं, लिख लीजिए। यानी तागूत को रिप्रेजेंट करने वाली पांच चीज़ें हैं दुनिया में। नंबर एक इबलीस, बाला सजा इबलीसू से मुबलिस, अल्लाह की रहमत से मायूस। दूसरा जिसकी भी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए और वो इस पर खुश हो। आज आपकी आंखों ने वो क्लिप्स देखे होंगे कि एक बुज़ुर्ग सामने बैठे होते हैं और लोग आते हैं और उसके आगे सजदा रेज होते हैं और वो बड़े प्यार से उनके सर पे हाथ फेरता है, तो वो तागूत है, ठीक है। तीसरा वो शख्स जो लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुलाए कि आओ मेरे आगे सजदे करो, इबादत की फॉर्म्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, लेकिन मुराद यही है कि अल्लाह से जो काम लेने देने थे वो इंसानों से लिए जाए। चौथा जो इल्मे गैब में से किसी चीज़ का दावा करे। और पांचवा जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा तालीमात के खिलाफ फैसले करे। आज पूरा सिस्टम ही तागूती सिस्टम है, कहीं भी आप देख लीजिए, यानी कुरान और सुन्नत की तालीमात से कॉन्ट्राडिक्ट्री माहौल के ऊपर अमल करना, वो कोई एक लॉ भी हो सकता है, वो एक इकोनॉमिकल कोई रेजोल्यूशन भी हो सकती है जिसको पास किया जाता है। और इसी तरह से मुसलमानों को तागूत की हर किस्म के साथ कुफर का हुक्म दिया गया। सवाल पैदा होता है, यकफुर बित्तागूत से क्या मुराद है? तागूत का इनकार कैसे मैं करूं? यानी एक चीज़ है ना कि मैं आपसे पूछूं आपने पानी पीना है, आप कहते हैं नहीं पीना, समझ आ गई मुझे भी, चलेंगे नहीं चलना। सवाल पैदा होता है कि तागूत से का इनकार, इससे क्या मुराद है? तो इसकी बात समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि जिस गलत काम का वो हुक्म दे उससे रुक जाइए। अल्लाह की इबादत छोड़कर शैतान की इतात करना, ये तागूत को खुश करना है। शैतान की इताद को छोड़ना असल में तागूत को का कुफर होगा। फिर इसी तरह से याद रखिए कि सारे अंबिया ने कुफर से, यानी सारे अंबिया ने तागूत से कुफर की दावत दी थी। क्या पता चला? आपके मेरे रास्ते का ऑब्स्टिकल, माय रोड़ा, उर्दू में कहेंगे ना रोड़ा, हर एक के रोड़े होते हैं। आप कहते हैं फलाने रोड़े अटकाए, तागूत आपकी मेरी जन्नत के रास्ते का रोड़ा है। हर नबी ने इसी से बचने की दावत दी थी। सूरत नाहल 36 में आप ये जाके बात देख सकते हैं। कौन तागूत की राह में लड़ेगा? वही लड़ेगा जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा। और तागूत के दोस्त कौन होते हैं? वही होते हैं जो तागूत की बात मानते हैं। तागूत से बच जाते हैं आप और मैं, خوشخبری کیا ہے؟ تو سورت زمر 17 والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، پھر میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ تو خلاصہ کر دیتی ہوں ساری بات کا۔ آپ نے ٹھان لی ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اور طاغوت نے ٹھان لی ہے کہ میں نے آپ کو جنت میں نہیں جانے دینا۔ اس رسہ کشی میں آپ جیت گئے تو جنتی ہیں، اور آپ کا نفس، آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کے دوست، آپ کو اللہ کے حکموں سے ہٹانے والے کوئی انسان یا قوانین جیت گئے تو اللہ نہ کرے ٹھکانے جہنم ہوں گے۔ اب بہت ہی کریٹیکل بات کرنے لگی ہوں۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں داخل ہونے میں تو کوئی جبر نہیں، ابھی پڑھا ہم نے لا اکراہ فی الدین، لیکن ایک دفعہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ اور میں ہمیشہ اسلام میں رہیں۔ کئی عمل ایسے ہیں جو بندے کو اسلام سے دور کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نواقض اسلام۔ نواقض نقضا سے، نون قاف دعاد اس کا روٹ ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے بندہ اسلام سے نکل جائے۔ اس کو تو لکھتے وقت آپ کے ہاتھ کانپنے چاہیے۔ میں پھر بات کو سمجھاتی ہوں آسان سے جملوں میں۔ شادی ہو گئی لیکن کئی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کئی شادیوں کا اینڈ ڈائیورس ہوتی ہے، کہیں سپریشن ہوتی ہے، کہیں خلا ہوتا ہے۔ ہر شادی کے نتیجے میں 100% انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کی خوشی نہیں ملتی۔ نواقض اسلام کیا ہے؟ بڑے پروٹوکول سے، بڑی امیدوں کے ساتھ اسلام میں آپ آئے لیکن کیئرلیس ہو گئے۔ آپ سوچیے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ انا ہوتی ہے اس میں، کبھی ضد ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے ساتھ نبھانا نہیں ہے، کبھی دوسری طرف بہت ظلم ہے۔ دونوں شوہر بیوی کی بات کر رہی ہوں، ایک رہنا چاہتا ہے، دوسرے کا مزاج ہی بہت بگڑا ہوا ہے، کہیں نشوز ہے تو کہیں کچھ ہے۔ تو اس وقت آخر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس گھر کو بچا نہیں پاتا۔ بالکل اسی طرح آپ چند چیزیں اسلام سے نکلنے والی نوٹ کریں، اور اس کو پڑھتے سنتے وقت تو دل کے اوپر جو چوٹیں پڑتی ہیں نا، کئیوں کو نہیں پتا کہ وہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ جی، میرے پاس جتنے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، موسٹلی چونکہ سسٹرز ہیں نا، 90% شوہر بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان ساروں میں سے میں مبالغہ نہ کروں تو 60-70% طلاق کے سوال ہوتے ہیں، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ شوہر یہ کہتا نہیں نہیں میں نے ایسے ہی دی۔ ایک بیوی ہے وہ کہتی مجھے 20-25 دفعہ طلاق دے چکا میرا میاں، اور جب میں پڑھنے کے بعد اس کو پوچھتی ہوں تو وہ کہتا ہے چل چل میں نے تو ایسے ہی دی تھی، پھر دیتا ہوں، میں دل سے نہیں دیتا تجھے طلاق۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث تین چیزیں، ہنسی میں، مذاق میں، اور ارادے سے، غیر ارادے سے کرو، ہو جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک طلاق ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو کھیل نہیں ہے یہ، گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، نواقض اسلام سے مراد وہ چیزیں جو انسان کو دین اور ایمان سے خارج کر دیں۔ یہ عقائد بھی ہو سکتے ہیں اور اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اعمال جو ایمان کو بگاڑ دیں اور انسان کو کفر کی طرف لے جائیں۔ اور جب کوئی بندہ ایسے کاموں میں پڑ جائے تو پھر اس کو فکر لگنی چاہیے۔ اب نوٹ کیجئے گا وہ کتنے ہیں، ذرا سا ہاتھ تیز رکھیے گا، ریفرنس لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ آپ کو شیٹ پہ ملیں گے۔ تھوڑا سا میرے حال کوئی پرابلم ہے، وہ شیٹ آ رہی ہے آپ کی، پہنچ رہی ہے آپ کے، ابھی صرف جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ لکھیں۔ بولوں گی تو میں صحیح لیکن اب لکھیے گا نہیں۔ آپ کی آج کی ورک شیٹ کے اوپر سارے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں، 18 پوائنٹس نوٹ کریں، اور یقین کریں دل کے درد کے ساتھ بول رہی ہوں، اور اپنے ان سارے مسلمان بھائی بہنوں کی محبت دل میں محسوس کر کے بول رہی ہوں کہ جو اس وقت بظاہر مسلم ہے لیکن سورت یوسف کی وہی آیت جو کل بھی کوٹ کی تھی کہ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے کلمہ گو بھی مشرک ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا لیکن اسلام سے آپ نکل چکے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے گھر میں رہنے والے، یعنی جب کئی سسٹرز اپنے مسئلے پوچھتی ہیں میں کہاں کے رہ جاتی ہوں، یہ تو بچے کہاں سے آگے، پھر یہ تو آپ کا رشتہ ہی ٹوٹ چکا ہے۔ इल्म की कमी। और कई जगह ऐसा है कि अभी गुंजाइश होती है, लेकिन वो ये सोच लेते हैं कि जी तलाक हो गई है, और आधी रात को घर से बाहर निकाल देते हैं सर्दी में, क्योंकि जी तलाक हो गई और गैर मर्द औरत इकट्ठे नहीं रह सकते, तो बाहर सड़क पे चली जाओ। ये भी किसी का वाक्या था। बेइल्मी कैसी बड़ी मौत है। तो नोट कीजिएगा, पहली बात ये है इस्लाम से जो बंदे को निकालती है वापस, चले जाओ गेट आउट, वो क्या है? अल्लाह की इबादत में शिर्क करना। सूरत निसा 116, मायदा 72। और इबादत की तो सारी फॉर्म्स आपको पता ही है ना, कुछ अगले हफ्ते फिर पढ़ लेंगे। क्या किसी गैर के आगे हाथ बांध के खड़ा होना इबादत है? जी। सजदा करना इबादत है? रुकू करना इबादत है? किसी से दुआएं और मन्नतें मांगना इबादत है? तब आप देख लीजिए कि जो अल्लाह की सिवा किसी और के की इबादत करेगा वो इस्लाम से निकल जाता है। दूसरी बात है मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों और मुशरिकों की मदद करना। ये सूरह तौबा 23, मुजादला 22, निसा 144 में। अब आज आप देख लीजिए, चाहे आप इसको पॉलिसीज़ का नाम दें, इसको वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दें, इसको पीस 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 का मानी दें, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का नाम दें, जब कोई मुसलमान हुकूमत किसी दूसरी मुसलमान हुकूमत के खिलाफ कुफार और मुशरिक हुकूमतों की मदद करेगी तो उसका अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम होगा। और यही चीज़ अफराद पे, यही ऑर्गेनाइजेशंस पे है। आज हम दुनिया के अपने मुल्क और हुकूमतें बचाने की खातिर इस तरह के काम करके न जाने कहाँ चले गए। तीसरी बात, अल्लाह के दीन से एराज करना, मुंह फेरना, इसके बुनियादी अकायद को ना सीखना और ना इस पर अमल करना, कितना कॉमन है ये। चले मुल्की सतह पे जो हो रहा है उसको तो आप में पीछे कर दें, क्या आज दीन से एराज है? आज दीन के बुनियादी अकायद सीखे जा रहे हैं? चलो सीख लिए तो अमल किया जा रहा है। और इसकी दलील है सूरह सजदा 22, कहफ 57 और अलाकाफ आयत नंबर 3। चौथी चीज़, मैं नंबर नहीं अब बोलूँगी, बस नेक्स्ट बोलूँगी, आप खुद ही तरतीब बनाते जाइए, अल्लाह की आयात का इनकार करना। कुरान में कितनी आयतें हैं? 6,000 से ज़ायद। जित उनमें से सिर्फ एक आयत का कोई इनकार कर दे, मैं नहीं मानता इस आयत को, इस्लाम से निकल गया। और दलील सूरत अनकबूत 47, अनाम 33, फुस्सिलत 28। नेक्स्ट, कुरान मजीद और रिसालत मोहम्मदी में शक करना, तौबा 45। आज ये भी होने लग गया। याद रखिए, कुरान पूरे पे कोई शक करे या कुरान की किसी आयत पे शक करे, आज ऐसे लोगों में कमी नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे शक करने वाले तो बतेरे हैं। फिर नेक्स्ट थिंग के कुफर और शिर्क छुपाना और इस्लाम का इजहार करना, सूरत निसा 142, बकरा 8 एंड 9 और निसा 145। ये कब होता है? जब कोई फ़ायदा लेना होता है मुसलमान बनकर। एक लड़की से मोहब्बत हो गई, अब उस लड़की के पेरेंट्स अभी बड़े ही दकियानूसी हैं बेचारे, दे आर नॉट ओपन माइंडेड एंड लिबरल मुस्लिम्स। वो कहते हैं चलो हम किसी गैर मुस्लिम से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। और वो लड़की आती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, कहती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे भी कोई नहीं पढ़ा, जाके बोल दो कलमा पढ़ दो, मैं भी नहीं नमाज़ पढ़ती, तुम भी ना पढ़ना, मैं जैसी हूँ वैसी मुसलमान तुम बन जाओगे। कहेगा तुम्हारी खातिर तो मैं तारे भी तोड़ सकता था, ये कौन सी बड़ी बात है। अब वो मस्जिद में आया और बैठकर सबके सामने क्या किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे बताइए कि ये क्या है? दिल में कुफर और शिर्क, ऊपर से इस्लाम का इजहार। और यहाँ तो चले बेजरर सा होगा ना, उसको अपना भी दीन नहीं प्यारा था तो दूसरा क्या प्यारा होगा। इससे भी खतरनाक बात कि इस्लाम के लिए दिल में बुग़्ज़ हो, कोई किसी मुसलमान मुल्क में स्पाई बन के आना चाहता है और उस मुल्क में गैर मुस्लिमों को आने की इजाज़त नहीं है या उस जगह पे आने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसे तमाम औकात में यानी दिल के साथ, दिल में कुफर या शिर्क है लेकिन ऊपर ऊपर का ऊपर इस्लाम है, इस्लाम इसको नहीं मानता, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ चलिए, और वो क्या है? मुशरिकों को काफिर ना समझना या इनके कुफर में शिर्क शक करना, मुशरिकों को काफिर ना समझना या इनके कुफर में शक करना, आले इमरान 85। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट्री इशू आज के दौर में लोगों ने बना दिया। याद रखिए, मुझे आपको ये फ़िक्र करनी चाहिए कि बहुत सारे मुसलमान भी मुशरिक हैं। जिस तरह मुसलमान होने के बावजूद भी कोई मुशरिक हो सकता है ना, इस तरह यहूदी या नसरानी होने के बावजूद भी कोई काफिर हो सकता है, और ये बात आप कुरान में पढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, अल्लाह ताला की आयात या रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाना, सूरह तौबा 65, 66 और निसा 140, ये कब होता है? एक शख्स था, वो अजान का मजाक उड़ाया करता था। जब अजान में इमाम कहते थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो आगे से बोलता झूठा जलकर खाक हुआ, राख हुआ कुछ, और उसकी बात सच हो गई। कैसे, कब? जब एक रात उसकी अपने ही घर के चिराग की आग उसके झोंपड़ी में लगी, और उसके बाद फिर उसके साथ वही हुआ, वो अंदर ही गल जल के राख हो गया। तो वाकई वो जो कहता था सच कहता था, तो उसका बुरा अंजाम हो गया। याद रखिए, मैं आप सबको भी एक छोटी सी नसीहत कर दूं, आप अभी आलिम नहीं बने, ना कभी बनेंगे सारी ज़िंदगी। ये भी आपको इस स्कूल से आपको कभी आलिम का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कोई ऐसी उम्मीद ना रखिए कि आपको आलिम फाजिल का कोई सर्टिफिकेट या आपको कोई कागज़ का टुकड़ा दे दिया जाएगा। लेकिन एक काम जो आपने कभी नहीं करना, कभी कुरान और हदीस के किसी मामले का, किसी एक फेल का मजाक नहीं उड़ाना। मसन दाढ़ी का मजाक, निकाब का मजाक, हूरों का मजाक, दो शादियों का मजाक, अपने अंदर से जुरत निकाल दीजिए, वरना बहुत उल्टी चोट पड़ेगी। आज का खेल बन चुका है, वो जिसके गले में शरीयत का पट्टा वो नहीं मानता दुपट्टा। ये जुमला तो मेरे भी कानों ने सुना, उतार फेंको ये दुपट्टे, गले में पहन लो शरीयत के पट्टे। ये शरीयत का मजाक नहीं है, और आप आके इतनी बड़ी स्क्रीनों पे बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या आपने लोगों को दीन दिया? लोग आज ऐसे दीनदारों के पास जाते हैं, उनको प्योर पानी से क्या लगे, उनको बहुत ही मज़े के फ्लेवर्ड नॉलेज मिल रहे हैं आज दुनिया में। आज याद रखिए, सच्चे इल्म को लेने की तलब कम होती जा रही है, और अल्लाह के नबी की वो हदीस बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि एक वक्त आएगा शायद कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए ना, बच्चे को सादा पानी दें और उसको रंग बिरंगा पानी, मीठा पानी दें, कौन सा लेगा? शरबत वाला जूस बच्चा पीता है या प्योर जूस पीता है? कोक पिएगा, सेवन अप पेप्सी पिएगा, या वो जमजम पिएगा? तो आज दिन ब दिन जितना दीन फैंसी और बहुत ही ज्यादा ऐसा पंपी एंड ग्लैमरी दिखाया जा रहा है, उनको हमारे जैसों के पास क्या लेने आना है? कड़वी बातें तो वो तो करनी पड़ेंगी। तो कभी भी दीन का मजाक मत उड़ाएं। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूलों या अहकामात को झुठलाना, एक होता है मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ देम, एक होता है झुठलाना, डिनाई देम। इससे भी इस्लाम से बंदा निकलता है। सूरत अनकबूत 68, जुमर 32, 59 और 60। फिर इसी तरह अल्लाह या रसूल या दीन इस्लाम को गाली देना, यह सूरह तौबा 61 है। आप कहेंगे कोई देता है गाली? वल्लाह ही देते हैं लोग, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जब जरा सी कोई चोट पड़ती है, कहते हैं अल्लाह तेरा घर डूबे तो तुझे पता चले कि सैलाब क्या होता है, और मैंने अल्लाह का पता नहीं क्या बिगाड़ा है कि सारे सदमे मेरे पे टूटने हैं। कोई ऐसी सिस्टर थी तो कुछ ही हालात का उतार चढ़ाव से चली, कहती मेरा अब नमाज पढ़ने को दिल ही नहीं करता, मैं अल्लाह से नाउज़ुबिल्लाह बदगुमान हो चुकी हूँ। हो जाइए, अल्लाह का क्या बिगड़ेगा? ऐसे नमरूद शद्दाद बड़े गुजरे, आप बिगड़ जाइए, अल्लाह का क्या बिगड़ेगा? वो तो लमजाले, वो तो समझ है। तो याद रखिए, कभी अल्लाह के बारे में मजाक से भी कोई बात ना करे, बहुत बड़ी जुरत है। फिर अगली चीज़ जो इस्लाम से निकाल देगी इंसान को, रसूलुल्लाह की तालीमात का और शरीयत का इनकार करना और अल्लाह की इताअत ना करना। सूरत नूह 7, सॉफ़ात 35। ऊपर जो थी नबी सल्लम या अल्लाह ताला ये दीन को गाली देना, ये तौबा 61 थी। तो फिर नेक्स्ट थिंग देखिए, ये बहुत अहम है, अल्लाह और रसूल की तालीमात को नापसंद करना अगरचे कोई इस पर अमल पैरा हो। मोहम्मद 9। ये बड़ी बारीक बात है, मारे बांदे आप किसी हुक्म पे अमल तो कर रही हैं लेकिन यू डोंट लाइक इट, ये चीज़ भी डेंजरस है। देखिए दुनिया में ऐसा होता है, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आप उनकी खातिर कुछ चीज़ ऐसी खा लेते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, आपको ऐसी चीज़ पहन लेते हैं जो आपको पसंद नहीं होती, आप कहते हैं अगले की खुशी है ना? अल्लाह रसूल का मामला इट्स वेरी डिफरेंट। आज जहाँ ज़रा सा एक अपने आप से वादा करके उठिएगा, मेरी नज़र में ये सारे कोर्सेस आपके अंदर जो चेंज लाएंगे ना, वो क्या है कि आपकी चॉइस अल्लाह और उसके रसूल की चॉइस से मिल जाएगी। लिख लें, इसकी बड़ी सी स्लाइड बना के डाल दें कि चॉइस का मिल जाना, अल्लाह और रसूल की पसंद आपकी पसंद, और जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पसंद वो आपको नहीं पसंद। इतना सीरियस मैटर है, आपको आप कर नहीं रहे वो काम पर पसंद नहीं है, अल्लाह कहता है जाओ फिर निकल जाओ। अल्लाह आपको मुझे दिल की गहराइयों से देखना चाहता है कि आप कितने खुश हैं। तो आज इसके बाद जाकर अपनी एक एक कपड़े और एक एक घर के कोने और अपनी एक एक हॉबी को जाकर देखिएगा। मैं तो यहाँ ये तक भी कहूँगी कि आज के दौर में दीन की तबलीग भी एक फितना बन गई। याद रखिएगा, कभी दूसरों की हिदायत के लिए खुद गुमराह ना हो। आज हम वो तरीके अख्तियार कर लेते हैं बाज़ दफ़ा तबलीग के नाम पर, जो कुरान सुन्नत के वाज़ेह कामात से टकराते हैं। बस आप देखिए कि हम सब सिस्टर्स में बैठे हैं ना इस वक्त, हम सब एक महज़ब लिबास में बैठे हैं, और मैं ये कहूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा ही होगा। पिछली लाइन में ब्रदर्स को बिठा देते हैं और मैं बगैर निकाब के उनके सामने आऊँ, या फिर चले मेरी इस तरह वीडियो बना के डाल दें यूट्यूब पे, फ़ायदा ही होगा ना किसी को। याद रखिए, वो सारे जन्नत में चले जाएंगे, उम्मीद है, मैं नहीं जाऊँगी। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में जब इस्लाम की दावत का मौका आया, तो उस दौर का रिवाज क्या था कि किसी ने बड़ी अहम खबर सुनानी होती थी जब, तो लाउड स्पीकर और माइक और व्हाट्सएप और फेसबुक ट्विटर तो नहीं थे, कैसे लोगों को जमा करें। तो उसका तरीका था एक मारूफ के, लोग सफा पहाड़ी पे चढ़ते, कपड़े उतार के तो ऐसे दूर से हैंग करते जैसे झंडा बना के होता है, और उस शख्स को कहते थे नज़ीरे उरिया, नज़ीर वार्नर, उरिया मीन नेकेड, नेकेड वार्नर। लोग जब ये हरकत उसकी देखते तो इधर उधर से सब जमा होना शुरू होते कि इसके पास कोई खबर है, या दुश्मन आ रहा है पीछे से, या कुछ और खबर है। नबी सल्लम ने जब लोगों को दीन की दावत देनी थी, तो यही लोगों ने आपको भी मशवरा दिया, आप भी यही कर लीजिए, क्योंकि लोग इसी बहाने तो आएंगे, वरना आप जाके सफा पे खड़े हैं, और या आप ओहद पे खड़े हैं, या सॉरी आप जाके हिरा पे खड़े हैं और लोगों को जमा करें, कोई आएंगे नहीं। तो आपने कहा नहीं, मारूफ के लिए मैं गैर मारूफ तरीका नहीं इख्तियार करूँगा। तो हमेशा याद रखे, मेरे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन तक दीन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जिन तक दीन पहुंचाने में आपको अल्लाह की कोई हद तोड़नी पड़ी। मर्द बहुत है मर्दों के लिए, आपने जाने, निकाब में जाइए, आपको जरूरत है तो आप जाकर शरीयत के में पर्दे के पीछे बैठकर बात कर लीजिए, आपकी बात पहुंच जाए। लेकिन इस तरीके से फिर स्क्रीनों की जो डिमांड्स हैं, फिर उनको कुछ मेकअप भी चाहिए, फिर उनको आपसे कुछ एक डार्क कलर के कपड़े भी चाहिए और कुछ अदाएं भी चाहिए, क्योंकि ये शो जाना है ऑन एयर। तो ये चीज़ें याद रखिए, कोई काम ऐसा जो पसंद ना पसंद में अल्लाह रसूल की पसंद से बदल जाए, ये चीज़ इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकती है। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, जो शख्स ये समझे कि शरीयत के अहकाम में से कुछ लोगों को अमल करने या ना करने की इजाज़त है, ऐसा शख्स काफिर हो जाता है। सूरह आल इमरान 85 है, इसका हवाला मैं समझाना चाहूँगी आपको। किसी ने जो बात शेयर की वहाँ थी, कहने लगे हमारे एक पीर साहब है, आते हैं हमारे घर, फिर खूब हम उनकी खिदमत खातर करते हैं। अच्छा, खैर जब बात बढ़ी तो मैंने कहा उनके अंदर क्या खूबियाँ और कैसा है, कहने लगे वो नमाज़ नहीं पढ़ते। लेकिन तो जब हमने किसी ने जुरत करके उनसे पूछ लिया कि जी पीर साहब, तो कहते चुप 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 चुप, पीर साहब ने पढ़ ली हुई है, ये पहुंचे हुए हैं। पीर साहब को नमाजें अब माफ है, क्योंकि ये मारफत के उन दर्जों पे पहुंच चुके हैं कि जहां जाने के बाद फिर नमाजों शमाजों की जरूरत नहीं रहती। ये है अमल फलां, नहीं जी, नहीं, उनको जरूरत नहीं है, ये हम जैसे बेचारे गुनाहगार हैं, ये जाके टकरे मारे हैं, पीर साहब तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये चीज याद रखिएगा, शरीयत से अगर कोई भी मुबर्रा होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, जो ज़िंदगी के आखिरी दिन भी अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम की दुहाई देते रहे। तो ये कहना करना भी दुरुस्त नहीं है। फिर अगली चीज़, वो शख्स जो अल्लाह और अपने दरमियान कुछ शख्सियात को वास्ता बना ले, इनसे मदद मांगे, इनसे शिफात का तालिब हो और इन पर तवक्कुल करे, तो ऐसा शख्स भी कुफर पे चला जाता है। कितना आम है, मेरी इनके आगे इनकी रब के आगे, पंजाबी में कहते हैं साड़ी सुंदा नहीं ते ना दी मोड़दा नहीं, जिनको नहीं आती ना पंजाबी। कुछ बुजुर्गों के मामले में लोगों का गुमान क्या है कि नऊज़ बिल्ला अल्लाह हमारी नहीं सुनता, है वो समी पर वो नहीं सुनता, पर इनकी यानी इन बुजुर्गों की बात को कभी रद्द नहीं करता। इनका इतना आला मुकाम है अल्लाह की नज़रों में कि जो अल्लाह को कह देंगे, अल्लाह ने कहना है जी बिल्कुल हाजिर हैं, जी मैं हाजिर हूँ, आप हुक्म करें, और हम बुलाते रहे ये नहीं मानते। ऐसे अकायद बंदे को कुफर में ले जाते हैं। और आज अफसोस के साथ कहूँगी कि बेदीनी पे नहीं, दीन के नाम पे ऐसे मजहबी रहनुमा हैं जिनके बारे में लोग, तो लोग वो खुद कहते हैं, नाम नहीं लूँगी, आदत ही नहीं है, ना फितने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्वे में एक स्कॉलर आए, लोग अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, मैं तो नहीं कहूँगी उनको, तो लोग उनको घुमाने के लिए ले गए एंड ऑफ दी वर्ल्ड, हमें भी ले गए थे, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मालूम ही नहीं है। तो वहां जाकर कहते हैं कि ये दरिया समंदर की सारी मछलियां इस वक्त सर उठाकर मुझे सलाम कर रही हैं, बिलीव मी। और क्या कुछ क्या कुछ, कराची में आप में जो कोई रहता है, अगर आप मेरी बात सुनकर पूछ लीजिए अपने घर वालों से, मैं खुद भी काफी अरसा रही हूँ, कराची शहर ऊंचा है, समंदर ऊंचा और कराची नीचे, और समंदर के किनारे क्लिफ्टन के करीब एक कब्र है, अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम से उनका मज़ार मशहूर है। आज भी सड़क चलते को पूछ लो वो कहेंगे अब्दुल्ला शाह साहब ने समंदर का पानी रोका हुआ इसलिए वक्त कराची में नहीं आ रहा, कुफर है। अब्दुल्ला शाह की इतनी अगर हैसियत होती तो कब्र से तो बेचारे निकल आते ना, वो बेचारे बुजुर्ग थे चले गए। तो याद रखिए आज इंडो पाक में इतना कुफर और शिरक है, अब मैं तो कहती हूँ अल्लाह बाकी ज़िंदगी मुझसे शिरक को मिटाने का काम ले ले। दुनिया में जो भी देखा सुना है उसमें सबसे बदतरीन चीज़ जिसमें इंसानियत मुबतला है वो शिरक है। फिर इसी तरह अगली चीज़ नोट कीजिएगा, मुस्तकबिल की खबरें देना या गुजरे हुए हल वाक़यात की खबरें देना, अबू दाऊद 3904 नंबर है इस बात की दलील में, यानी किसी के बारे में ये सोचना कि ये फ्यूचर की खबरें देता है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, फॉर्च्यून टेलर्स जी, और माजी की खबरें सुना दी, झूठी सच्ची कहता नहीं सच है। फिर अगली चीज़ जो इंसान को इस्लाम से निकालती है वो जादू करना और कराना, सूरत बकरा 102, तरगीब की रिवायत है 3046 और बुखारी में 2766 जी। जादू पे आगे बात करते हैं अभी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट थिंग, अल्लाह और उसके रसूल के हलाल करदा को हराम और हराम करदा को हलाल बना देना, सूरह तौबा 29। यही सवाल अदी बिन हातिम ने अल्लाह के नबी से किया था इसी आयत की रोशनी में। क्या आज कोशिशें हैं दीन की हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम करदा को हलाल करने में? एक दो चीज़ें हैं, मसलन पिग, आज तक की 2018 की सेंचुरी तक तो मुसलमान पिग से वाकई नाला है, लेकिन कितनी चीज़ें कबूल कर ली। चंद दिन पहले ट्रैवलिंग के दौरान एक जगह रुके तो वहाँ एक लड़की से बात हुई, तो बात कर रही थी तो कुछ बातें उसको इस्लाम की पता थी ना, कहती आई नो यू मुस्लिम डोंट ईट पिग, मैं इस मौजू पे इतनी बात नहीं करना चाह रही थी, इट्स ओके। खुद ही सुनाने लगी, कहती मेरे पास एक लड़का इधर स्टोर पे काम करता था, रिजवान उसका नाम था, मुझे समझ आ गया कि जहरा के उर्दू स्पीकिंग ही होगा, तो कहती ही लुक लाइक जस्ट अस, बट एक दिन क्या हुआ कि आई मेड सम फूड एंड आई सर्व टू हिम एंड ही एट इट और ही से वेरी टेस्टी वेरी टेस्टी, खा गया और कहने लगा बड़ा अच्छा है, और जब मैंने उसका येस आई पुट पिग इन दिस, कहती जब मैंने पिग का नाम लिया तो वो तो ही बिकेम मैड, इतना उसको गुस्सा आ गया तुमने मुझे पिग खिला दिया। तो दैट मीन उस लड़की को ये पता था मुस्लिम वो होता है जो पिग नहीं खाता, ये है बात असल में। एक ही आयत के अंदर पिग की भी बात है और उसी में 500 की भी लॉटरी की भी बात है और गैर अल्लाह के ज़बीहों की भी बात है, कुछ को हमने पिक किया हुआ है कुछ को चूज़ किया हुआ है। अफतू में नो नबी बात दिल की ताबी व तक फ़रू नबी बात। और 18th पॉइंट क्या है जो इस्लाम से निकालता है इंसान को? अल्लाह और रसूल के किसी हुक्म से बुग़ज़ रखना, एनिमिटी फील करना, क्या मुसीबत है ना होती मुसलमान ना ये करना पड़ता, और इसकी दलील है सूरत मोहम्मद 9 और 8। क्या पता चला कि बी केयरफुल, एक दफ़ा घर बना है तो बनाए रखिए, घर बनाना आसान है बसाना मुश्किल है, खुद को कहना कि मैं मुसलमान हूँ ये आसान है लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। वो क्यों अल्लामा इकबाल ने एक फ़ारसी में बात कह दी कि चू मी गोयम मुसलमानम बलर्जम, मैं खुद को मुसलमान कहते हुए लरसता हूँ के दानम मुश्किलाते ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद क्या क्या मुश्किलात आती हैं। तो बात क्या हुई कि इंसान को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, बी केयरफुल। नेक्स्ट थिंग, अब बार बार इन आयतों में कुफर कुफर का लफ्ज़ आ रहा है तो ये क्या होता है? आज हमारे यहाँ तो इतना मारूफ लफ्ज़ है, ये भी काफिर वो भी काफिर, आइए ज़रा सा इसके हल्का सा ज़्यादा नहीं कम से कम कुफर किसको कहते हैं। तो फर्स्ट थिंग है कि कुफर ईमान की ज़िद है, इनकार और इनाद को कहते हैं, कुफर में तकब्बुर और नाफरमानी लाजिम है, यानी कुफर कब होता है जब बंदा इनकार कर दे, बुगज़ रखे, तकब्बुर करके किसी हुक्म को झुठलाए या नाफरमानी करे। इसकी बेसिकली दो बड़ी किस्में हैं, वेरी सिंपल। पहला है जिसको आप कह सकते हैं कुफर अकबर, बड़ा कुफर, ग्रैंड कुफर, इसी को एतकादी कुफर भी कहते हैं, यानी कुफर विद अकीदा, आपके बिलीफ के अंदर इनकार है। اس کفر کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. جو ابھی ہم نے اوپر بات کی ہے نا کفر, وہ یہی کفر تھا. ٹھیک ہے, دوسری قسم ہے کفر اصغر, جس کو کفر عملی بھی کہتے ہیں. یہ باتیں ہم ساری سورہ بقرہ کے شروع 3 رکوعوں کے اندر اندر پڑھ لیتے ہیں عموماً تفسیر میں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, بندے کو ایمان سے نکالتا تو نہیں ہے لیکن کمال سے گرا دیتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ایک ہے اعتقاد کا کفر, آپ آئے اسلام میں لیکن آپ دل سے اللہ کو بڑا نہیں مانتے اور رسول کو نبی نہیں مانتے, تو آپ نکل گئے ایمان سے. دوسرا کیا ہے, ایمان ہے لیکن آپ عمل نہیں کر رہے اس ایمان کے مطابق, بے عمل مسلمان ہونا, تو اس کو عمل کفر اصغر کہتے ہیں. اس سے بندہ اسلام سے نہیں نکلتا لیکن درجے کم ہو جائیں گے. اور روایت اس میں بخاری کی 6809 نمبر ہے. یہ جو کفر اکبر ہے نا, یہ بہت مشکل ہے. بڑے بڑے لوگ اس میں گزرے, نام مشکل لگے تو مت لکھیے, صرف سن لیجئے. کفر اکبر کی 4 قسمیں, یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ کفر جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اس کی 4 قسمیں ہیں. سوچئے بھلا کیا ہوں گی, چند سیکنڈ سوچئے. کفر اکبر کون سا جو انسان کو اسلام سے نکال دے, اس کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1, کفر جہالت اور تکذیب. جہالت اور تکذیب, جس کی بنیاد جہالت پر ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے تکذیب کی جاتی ہے. ابھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. سورت مومن آیت 70 میں یہ بات ہے, سارے لکھ لیں پھر میں فرق سب کا الگ مثال میں دوں گی. دوسرا کیا ہے, کفر کتمان حق, حق کو چھپا دینا. یعنی انسان کو حق پتہ ہے لیکن چونکہ عمل نہیں کر رہا نا, تو کسی نے پوچھا تو کہا نہیں, آئی ڈونٹ نو, اور اسی طرح حق کے آگے سر نہ جھکانا, حالانکہ دل کو یقین ہے کہ یہ سچ ہے. سورت نمل 14. تیسرا ہے کفر اناد و تکبر, خود کو بڑا سمجھنا. حق کا اقرار تو کیا لیکن آگے نہیں جھک رہے, جیسے ابلیس. سورہ بقرہ 34. اور آخری ہے کفر نفاق, منافقت, لوگوں کو دکھانے کے لیے بظاہر اطاعت اور فرما برداری کی اور دل بالکل ایمان اور تصدیق سے خالی ہو. بقرہ 8-10. اب ان چاروں کو اگر جمع کرے نا, تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, اللہ آپ کو مجھے اندر باہر سے مسلمان دیکھنا چاہتا ہے. آپ اس کی کئی مثالیں لے سکتی ہیں, اپنے اوپر لیجئے. ان ساری مشکل ٹرم سے نکلیں آگے. کبھی کبھی آپ اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتی, کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس حکم سے بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں اتنے بڑے افسر کی بیگم, اس گریڈ کی بیگم عورت, اور میں اس حال حلیے گیٹ اپ میں بھر جاؤں, یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. سمجھ لیجئے یہ تکبر کا کفر ہے. آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھے, حق کو چھوٹا سمجھے. اب میں یہاں نماز پڑھوں ان کے سامنے, اب میں زمین پہ سر رکھوں, لوگ تو مجھے دیکھ کر ہوئے ہوئے کریں گے, اور مجھے شیک ہینڈ کی دعوت ملی اور میں اب اس کو شرمندہ کر دوں, نو اٹس اوکے, آئی ول شیک دا ہینڈ. یہ سارے کفر ہیں. یہ بڑی ٹرمز میں آ کے نا ہم الجھ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. جہالت کی وجہ سے آپ کوئی بات نہیں مانتے نا, اللہ آپ کو معاف کر دے گا کب, جب علم آ جائے گا. لیکن یاد رکھیے, ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہوتے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کتنے جو حق کا اقرار کرتے ہیں دن رات, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن عمل میں دیکھ لیجئے, خاندان بڑا, معاشرہ بڑا, سب کچھ ہے, اور بہت سارے دکھاوے کے کام کر کے انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے. چونکہ بات ہوئی ہے نفاق کی, تو چند جملے اس پہ بھی سن لیں. بڑا ڈینجرس ہے, اس پہ تو ہم نے ایک پورا سیمینار کرنا ہے, لیکن اس میں صرف مضبوط دل والوں کو بلانا ہے, کیونکہ وہاں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی ہو جائے گا. بلیو می, ریئلی اٹس جسٹ لائک اوپن ہارٹ سرجری. نفاق کا تو سارا عمل ہی دل سے ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, بلکہ 4 ٹرمز آپ پڑھتے ہیں, میں ذرا سا خلاصہ دے دوں. دیکھیے سورہ بقرہ کی پہلے 2 رکوع آپ نے پڑھے, کیا ٹرمز ہیں, ہدل للمتقین, کفرو الذین کفروا, اور تیسرا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین, جس کو منافق کہتے ہیں. ایک ٹرم ہے مومن یا متقی, ایک ہی بات ہے, کافر منافق. چوتھی ٹرم ہم تیسرے رکوع کے بعد پڑھتے ہیں, اور وہ ہے فاسق. 4 مختلف چیزیں ہیں. مومن پڑھ لیا الحمدللہ, تھوڑا سا منافق کو دیکھیں پھر فاسق کو بھی دیکھیں گے. نفاق کیا ہے؟ نمبر 1 یاد رکھیے کہ نفاق دل کا فعل ہے. نفاق کیا ہے؟ زبان سے ایمان کا اقرار, दिल में कुफर का होना, ये बात आप पढ़ सकते हैं, आपको कई किताबों में मिलेगी कि इंसान दिल से न माने। इसी तरह निफाक की भी दो ही किस्में हैं, जैसे कि अभी कुफर की दो पढ़ी, यानी निफाक के अकबर और असगर। निफाक के अकबर क्या है कि इंसान ज़ाहरी तौर पर अल्लाह और उसके फरिश्तों, किताबों, रसूलों और आखरत पर ईमान रखे, लेकिन बातिन में सारे का सारा जो कुछ है वो इस्लाम को तोड़ने वाला हो। अल्लाह के नबी के दौर में ऐसे लोग मौजूद थे, और सूरत निसा 142-143 ऐसे ही लोगों के लिए कहा। पारा ख़त्म होता है, इन्नल मुनाफिकी नफे दर की असफली मिनन्नार। याद आ रहा है किसी को? मुजब्जबी नबई नजा लिकला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ऐसा शख्स जो दो कश्तियों का सवार हो। इसी तरह निफाक के असगर के अमल का निफाक, आज मुसलमानों में अक्सरियत इनकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में भी अभी तक निफाक के अकबर थोड़ा है। दिल से हम इस्लाम, अल्लाह, रसूल को मानते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अमली निफाक है, और वो क्या, जाहिर में कुछ दिल में कुछ, नाम के मुसलमान काम के अपने मर्जी के। तो इस निफाक को तो हम बाद में कभी समझेंगे, बस दुआ कर लीजिए कि अल्लाहुम्म तहर कुलूबना मिनन निफाक, ए अल्लाह हमारे दिलों को निफाक से पाक कर दे, और आमालुना मिनर रिया, हमारे आमाल को रियाकारी से बचा दे, क्योंकि इसके बगैर इस्लाम के आला दर्जे नहीं मिलेंगे। अब आगे अगला सवाल है फिस्क, निफाक और फिस्क में क्या फ़र्क है, फासिक कौन होता है? तो याद रखिए, फसा का कहते निकल जाना, खरजा। फिस्क को फजूरे की लफ्ज़ है, यानी गुनाह करके इताअत से निकल जाने को फिस्क कहते हैं, अगरचे वो छोटा ही काम हो। अल्लाह के किसी हुक्म को छोड़कर उसे निकल जाना और नाफरमानी करना और हक के रास्ते से निकल जाना, ये फिस्क व फजूर है। मैं एक जुमला बोल देती हूँ, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ही समझ आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं फासिक और मुनाफिक में क्या फ़र्क है, मैं आपसे भी पूछती हूँ, जवाब ना दें अपने आप से पूछ लें कि आपको पता कि नहीं। अब सुने, निफाक या मुनाफिक दिल का रोगी है, वो छुपाता है। अभी उसको शर्म है कि लोग शुड नो सेज मी क्या आई एम मुस्लिम, बट फासिक अपेरेंटली जाके सबके सामने गंदे काम करने वाला। फासिक अपेरेंटली सिनर है, मुनाफिक हिडनली सिनर है। निफाक दिल का फेल है, फिस्क जाहिर का फेल है। मसलन आप देखिए कि एक मस्जिद में 50 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आप मैं नहीं कह सकते कि कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है, हमें नहीं पता। आप नहीं कह सकते युराउनन्नासा, ये दिखावे की नमाज पढ़ रहे हैं, आप नहीं कह सकते। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन एक शख्स उसी मस्जिद में आए और कपड़े उतार कर नाचना शुरू कर दे, ये फासिक है, इसको हम बुरा कह सकते हैं? फिर समझिए बात को, बहुत क्रिटिकल बात है, कुछ का दिल टूटेंगे अभी मेरी अगली बात सुनकर। मुनाफिक नहीं आप किसी को खुद से कह सकते, पर फासिक तो खुद को कह रहा है कि मैं फासिक हूं। बुराई की दावत देने वाले, न्यूडिटी फैलाने वाले, और गंदी फिल्में बनाने वाले, और औरतों मर्दों को नचाने वाले, और स्क्रीनों पे आकर लोगों को की निगाहों को गंदे करने वाले, चाहे वो एंटरटेनमेंट है चाहे वो कॉमेडी है, ये फासिक है। आज भी इस दुनिया के इन खित्तों में जहां हम बैठे हैं, इधर के कुर्बो जवार में ऐसी बस्तियां हैं जहां कपड़े पहनना मना है, हराम है कपड़े पहनना। जी, एक खास एरिया के इन अंदर रहने वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, और आज भी वहां सैतनिक वर्शिप होती है, शैतान की डमी बनाकर जाके सजदे करते हैं। कल मुझे कोई सिस्टर ही सुना रही थी, कोई ऐसी जगह पे किसी वजह से गए और इनको नहीं पता था, लेकिन खिड़की से बाहर देखना अपनी आंखों को गुनाहगार करना था। खुली सड़कों पे मादर जात नंगी औरतें जब फिरें तो आप उसको क्या कहेंगे? फिर लोग कहते नहीं बुरा नहीं कहें, आपको क्या पता वो कितना अच्छा है, वो कुत्ते को पानी पिला के एक तवायफ भी तो बख्शी गई। हम यही सोचे बैठे हैं वल्लाही कि हमें उसने फलाने ने जाके बख्शवा देना है। याद रखिए फासिक इज जस्ट लाइक आप अपनी जुबान में कह लेना बागी, अल्लाह तू कर जो तूने करना है। और आज इस वक्त एक जी आज इस वक्त का जो दौर है ना, फिस्क सरों पे नाच रहा है। पहले एक आम बात थी, औरत मर्द, लड़की लड़का, सिंपल सी बात थी ना। देखिए आप, मैं जिस माशरे में पहले बड़े हैं, हमारी सबकी उम्रें कमोबेश सेम ही होंगी ना, हमने सब ने एक ही माहौल एक ही कल्चर देखा है, बड़ी बुरी बात समझी जाती थी लड़की लड़के की दोस्ती को, ऐसी था ना, विदाउट मैरिज शादी के बगैर के ताल्लुकात सवाल ही नहीं। ये वहां तो यही बड़ा था कि लड़की कहती है मेरी शादी इस लड़के से कर दो, या लड़का कहता है मैंने मामू की बेटी से नहीं करनी, मेरी फलां से कर दो, यही जुर्म अजीम था। आज क्या, इट्स ओके, आज ये भी कोई इशू नहीं रहा, ये तो होगा, एक्सेप्टेड था, हो गया क्योंकि पहले एक्सपेक्टेड था। आज का इशू पता क्या है कि लड़का लड़की से ही शादी के, वो किसी लड़की लड़की को ना ले आए कि मामा मेरी शादी इसी लड़की से करो, और लड़के लड़के की शादी, और ये जो टर्म्स हैं आप ही लोग सुनाते हैं। देखिए, गलत चीज़ों को अच्छा नाम दे देंगे तो वो खूबसूरत नहीं होंगी, और अल्लाह के नबी ने कहा था क़यामत के करीब एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि लोग गुनाहों के नाम बदलेंगे। आप शीट्स को नहीं देखे, मेरी बात सुने, ये आपका इम्तिहान है, गुनाहों के नाम बदल जाएंगे। आज उसकी बेशुमार मिसालें, फरमाए लोग शराब पियेंगे उसका नाम बदल देंगे, आज शराब को क्या कहते हैं सबको पता, सूद को क्या कहते हैं लोग, इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्टिंग नाम है, रियली, यानी नाम बदल दो। आप चीनी की बोतल के ऊपर नमक लिख दें ताकि चींटियों का ना पता चले कि इसमें चीनी है, होगा ये कभी, वो तो उसकी खुशबू सुनकर आ जाएंगी। आज ये इश्यू फिस्क सर पे चढ़ रहा है। कल जिंदगी में पहली दफा मैंने एक नई टर्म सुनी, गलती याद होगी, लेकिन उसका खुलासा क्या था, समर गेस समर लेसबियंस, एंड व्हाट इज द न्यू टर्म जी फाइजा, बाइस, समर बाइस, बोथ सेक्सेस आर ओके, वट एवर वी विल गेट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं समझ आई तो शुक्र करें, नहीं आई मत पूछें एक दूसरे से, रियली ये रोने का मुकाम है। आज हमारे बच्चे जिस माहौल में आंखें खोलने में, वो कहते हैं डजेंट मैटर, मैंने जिस बच्ची से शादी करनी है अगर वो किसी लड़के से ताल्लुक कायम कर ले इट्स ओके, और अगर वो किसी लड़की से भी करे आई डोंट माइंड इट। ये वक्त तो मुसलमानों ने नहीं देखा था कभी, ये फिस्क है। इस वक्त आपके मेरे और उम्मत मुस्लिमा की जवान नस्ल के ऊपर सबसे बड़ा हमला निफाक का नहीं है, वो तो मुंह से कहते हैं आई डोंट केयर, मुनाफिक वो होता है जिसको शर्म आती है, ना 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 मुझे इस्लाम से ना दूर करना, आई एम मुस्लिम, आई लव प्रॉफिट, ये गुजर गया दौर, आज खुल के कहते हैं हु केयर्स, आई डोंट माइंड इट, दिस इज ओके, आई इट डजेंट बॉदर मी, ये है फिस्क। आज हमारे बच्चों के मुंह से ये जुमले क्यों बोले जाते हैं कि आप कितनी नैरो माइंडेड है मॉम, आप इसको माइंड कर रही हैं कि अगर वो लड़की किसी लड़के के साथ भी ताल्लुक गुजार ले और लड़की से भी कर ले सो शी इज बाय। अब मुझे आप बताइए इसके बाद फिर फिस्क क्या होगा, गंदगी, फिस्क का ताल्लुक है ही गुनाहों से, लगवियात, और फिस्क का ताल्लुक जो है जितना आपके हमारे हाथों में गैजेट्स, हमारे बच्चों के हाथों में तीन लफ्ज़ों को लिखाकर आप गंदगी दे दीजिए उतना सोसाइटी में फिस्क फैलेगा। आज निफाक इतना नहीं फैला, पीपल से डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, रिलीजन की तो बात ही कोई नहीं, निफाक तब होता है, याद रखिए जुमला भी लिख लें, निफाक किसी सोसाइटी में कब होता है, जब इस्लाम या टू बी अ मुस्लिम होना मजबूरी या एक ज़रूरत समझी जाती है। फिस्क कब आम होता है, जब लोगों को, तरतीब से दे मुझे, जब लोगों को इस्लाम से रिलीजन से मजहब से कोई सरोकार ही नहीं होता, अब क्या करेंगे। देखिए इंसान, तरतीब से, इस्लाम किस तरीके से एक एक चीज़ का हमारे सामने मामला करता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें कि आप देखिए ना कि आप कोई भी एक काम करते हैं इट्स ओके, हो गया, शर्मिंदगी हुई, अफसोस हुआ, पलट आएंगे, एक वक्त नमाज नहीं पढ़ी अगले वक्त में नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी बात, बट इश्यू इज़ हेयर, और वो क्या है कि झिझक ही ख़त्म हो गई है, इन गॉड वी ट्रस्ट ख़त्म हो गया, अब इन गॉड वी डोंट ट्रस्ट वाला आज कल्चर है, और ये फिस्क का कल्चर है। शैतान ने भी यही किया था, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी फिस्क अकबर है, ठीक है, और फिस्क असगर क्या है कि वो लोग जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी जो कर ही रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी भी शर्म है, यानी आपको मैं खुलासा देती हूँ, आपको शीट्स मिल गई हैं, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर दूँ ताकि आप लोग ये जुमला पूरा करके फिर करती हूँ, अभी जो लिख रहे थे वो लिखते जाइएगा। फिस्क की दो किस्में, फिस्क अकबर और फिस्क असगर। अकबर क्या है? अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी, ठीक है, कुफर। फिस्क असगर क्या है? जैसे दीन में नई बातें पैदा करना, बिदत। अल्लाह और आखिरत क़यामत के दिन पर ईमान रखना लेकिन हराम को हराम ना समझना। नबी सल्लम का नाम लेना लेकिन उनके तरीक़ों को ना मानना। क्या पता चला कि बस ये एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम से बंदे को निकाल देती है। तो अभी तक हमने कितनी टर्म्स पढ़ी? आज पेज को खोल लीजिए, ज़रा अपनी शीट को खोलें। आपके सामने कई पेज की शीट है, इसको ज़रा सा देखिएगा और पेज ऐसे पलटें कि आपके साथ वाले को भी आवाज़ ना आए। देखिए, पहली शीट पे तागूत लिखा हुआ है। आप अब जो सुन चुके हैं ना, ये घर जाके अब आपने इस शीट पे अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आप सेट सेट करेंगे। पहली चीज़ तागूत, फिर उसका इनकार। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी नवाकिज़े इस्लाम, इस्लाम किन चीज़ों से इंसान से निकलता है। इसके जो 22 पॉइंट्स थे ना, 17 थे, ये पॉइंट्स हैं। जो बातें मैंने बोली हैं रेफरेंस आगे आपके पास है, बात वाज़े। अगर आपने कोई चीज़ मिस नहीं की ना, तो ये 17 पॉइंट्स आपके इस शीट पे आगे, और आपने जो बातें लिखी हैं वो इस शीट के आगे जाके लिखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग, हमने कुफर को कर लिया, निफाक को कर लिया। अब सेकंड पेज के मिडल से आप अपनी शीट्स पे अपने नोट्स लिख सकते हैं, और वो क्या है कि जुल्म क्या है। ये भी एक बड़ी मारूफ सी फॉर्म है। तो जुल्म क्या है? किसी चीज़ को इसके जायज़ मुकाम से हटा देना। ये लैपटॉप टेबल के मिडल में होना चाहिए। मैं इसको कोने में ऐसे रखूं कि आधा नीचे गिर रहा हो और मेरा हाथ लगे और ये गिर जाए, ये जुल्म होगा इस लैपटॉप के साथ। हकदार को हक ना देना जुल्म है। इसकी भी दो ही किस्में हैं, नंबर एक जुल्म अकबर और एक है जुल्म असगर। जुल्म अकबर क्या है? इन्न शिर्क अला जुल्मुन अजीम। ये जो रेफरेंस लिखा है ना, ये पहली किस्म है, जुल्म अकबर, सूरत लुकमान 13, ठीक है। यानी शिर्क का एक नया लफ्ज़ इसमें से निकल गया। और जुल्म असगर क्या है? हर जुल्म जिसका दर्जा शिर्क से कम है, इंसानों के साथ भी दूसरों में, सूरत अल्लाह की आयत नंबर 1 है। बहुत ही मारूफ टर्म जो बहुत ही ज़्यादा फिर हमें दुखी करेगी, वो है शिर्क। इसको भी समझिएगा, शिर्क से क्या मुराद है? अल्लाह के साथ खास कामों में किसी और को इसका शरीक और हमसर बनाना। शिर्क क्या है कि किसी को अल्लाह के बराबर या इसके मुकाबले का माना जाए, और जो चीज़ें अल्लाह ने अपने लिए खास की हैं, मसलन सजदा, कुर्बानी, मुश्किल के वक्त पुकारना, कुदरत में दूसरों को हिस्सेदार समझना। इस मामले में नबी, वली, जिन, शैतान, भूत सब बराबर हैं। ये सब शिर्क में, शरीयत में शिर्क कहलाता है। आप कह लीजिए कि शिर्क तौहीद अलूहियत की जिद है। शिर्क क्या है? तौहीद का ऑपोजिट है, ठीक है। शिर्क की कितनी किस्में हैं? बहुत ही मारूफ बीमारी है। दो किस्में, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। चलिए ज़रा सा शिर्क की अकसाम को देख लेते हैं कि शिर्क की जो बड़ी किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। दो बड़ी बड़ी किस्में हैं, अकबर और असगर। अकबर क्या है? नाम से भी अब तो समझ आ जाएगा ना। पीछे हमने अल्लाह ताला की तीन सिफात पढ़ी है ना, तौहीद रबूबियत, अलूहियत और असमा सिफात। बस कह लीजिए इन तीनों सिफतों में किसी और को शामिल कर लेना, ये शिर्क होगा। किसी जिंदा को, मुर्दा को, जानदार को या बेजान को, ये सब कुछ शिर्क होगा, ठीक है। इसमें पहला रेफरेंस आपके सूरत निसा 116 का है। इन्ना अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाही फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा। यकीनन अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए, और इसके अलावा जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा। और जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है वो यकीनन दूर की गुमराही में खो गया, ठीक है। तो शिर्क क्या है? जो इंसान को दीन से, इस्लाम से निकाल देता है। याद रखिए कि शिर्क बाल से भी बारीक है। कल से आपको एक दुआ याद कराई जा रही है ना, याद कीजिए और दुआएं मांगिए कि अल्लाह ताला आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें से निकाल दे और आप हकीकत में इस चीज़ के ऊपर आ जाएं। अब रह गई बात अगली, और वो क्या है? शिर्क असगर, छोटा शिर्क। ये वो शिर्क है जिसके में से आप कह लीजिए शिर्क अकबर में जो चीज़ें नहीं आती वो असगर में, फिर समझ लीजिए। पहली बात है कि जो शिर्क असगर करेगा वो इस्लाम से नहीं निकलेगा और ना हमेशा जहन्नुम में रहेगा, जाएगा, दाखिल किया जाएगा, लेकिन फिर अल्लाह उसको निकाल देगा। ये वो शिर्क है जो सिर्फ अमल को बर्बाद करता है। हाँ, शिर्क असगर, ये जुमला लिख लें, शिर्क असगर शिर्क अकबर की तरफ ले जाने का वसीला है। छोटे छोटे शिर्क जब आप करेंगे ना तो बड़ा भी हो जाएगा। अल्लाह चाहे माफ़ कर दे, चाहे तो ना माफ़ करें। इसकी किस्में लिखा रही हैं अब आप देखिए कि जो आपके पास इस पेज पे लिखा हुआ है, शिर्क जो शिर्क असगर है ना, तीन किस्म का होता है। नंबर एक, कौली शिर्क। कौली शिर्क क्या है कि इंसान के मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है, इसकी आगे से फिर अगर आप देखें, आपको नंबर वन आई दिख रहा है ना, उसके अंडर 8 पॉइंट्स हैं, फिर 2 दिख रहा है, तो अब ये सारी जो चीज़ें आप लिख रहे हैं ना, ये कौली शिर्क ही हैं। जहाँ वन है वहाँ कौली शिर्क लिख लीजिए, और अगर अभी नहीं समझ आएगी ना तो अपने नोट्स लेते जाइए, बाद में इसमें जाके नेट कर दीजिएगा, लेकिन फोकस रहे। नंबर एक, गैर अल्लाह की कसम खाना। तिर्मिज़ी 1535 नंबर। गैर अल्लाह की तरफ निस्बत करके नाम रखना, मसलन अब्दे वुद, वुद का बेटा। सही, अबू दाऊद की रिवायत है 494 4949 और इब्ने माजा 3725। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कहना कि जो अल्लाह चाहे और आप भी चाहें। कौन? नबी सल्लम। एक शख्स ने आपके सामने आके क्या कहा था कि माशा अल्लाह व माशीता, वो दुनिया में होता है जो अल्लाह चाहता है और नबी सल्लम आप चाहते हैं, तो अल्लाह के नबी नाराज़ हुए और आपने कहा कि अजलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तू मुझे अल्लाह ताला का शरीक बनाता है, और इसकी दलील सिलसिला तो सहीहा 139 है। फिर चौथी चीज़ जो बंदे को शिर्क में मुबतला करती, खुद को बादशाह कहना, अपने आप को खुद बादशाह कह देना, जामे सगीर 988 इसकी दलील है। फिर मालिक के लिए रब और नौकर के लिए अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, बुखारी की रिवायत 2552 है। फिर हालातों वाकयात की निस्बत गैर अल्लाह की तरफ करना, नऊज़ु बिल्लाह, ज़रा सोचिए, ये फ़लां के करने से हुआ, ये फ़लां बुज़ुर्ग की करामत, ये वाकया इसलिए हुआ कि फ़लां का बेटा मर गया तो आज सूरज को ग्रहण लग गया, ये सब भी शिर्क है। ये मुस्लिम की रिवायत 6774। रेफरेंसेस में ना भी उलझेंगे ना, बस आप इन बातों को ग्रैब करके सोचिए इस वक्त हमारी उम्मत में कितना शिर्क है। फिर इसी तरह सितारों में तासीर मानना, सही बुखारी 846, यानी सितारों के असर से किस्मतें बनती बिगड़ती। हमारे कल्चर में कितना आम है आपके सितारे गर्दिश में, कोई कहने लगा मैं तो सदा का बदनसीब हूँ, मैं जब पैदा हुआ था सितारे गर्दिश में थे, आज तक है, आज करते हैं लोग उसका सितारा। और ये क्या है, लिब्रा और विर्गो और टॉरस, ये क्या है सब, ये सब इसमें आता है। याद रखिए बंदा मुशरिक हो जाता है। और हमारे तो मारूफ अखबारों में सफ़े हैं, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये सब शिर्क है। फिर इसी तरह शिर्क एक दूसरी किस्म है, इधर लिख लीजिए, फेली शिर्क। जिस्म के किसी उज्व से कोई शिर्क होता है। पहली क्या थी, जितनी लिखाई हैं आपको, 5 6 7 जो थी, ये है जुबान से कोई ना कोई बात ऐसी निकली। अब क्या है, फेली शिर्क, फेल ऐसा कर दिया, मसलन बदशगुनी। इसमें नंबर वन क्या है, बदशगुनी लेना, अबू दाऊद 3921। बदशगुनी क्या होती है, बिल्ली आगे से गुजर गई, अब तो कुछ होगा, काली बिल्ली रास्ता काट गई, कौवा आके दीवार पे बोल गया। फिर इसी तरह दूसरी चीज़ है तावीज़ लटकाना, गले में कोई ऐसा टुकड़ा बांध लेना, काले रंग का कोई, कोई भी सिल्वर कुछ भी, जिससे ये मुराद हो कि ये मुझे किसी आफत से बचाएगा, ये भी फैली शिरक है। सही तरकीब 3457 नंबर है इसमें। फिर काहिन या आराफ के पास जाना, आराफ कौन होता है, पामिस्ट्री बताने वाले, ज्योतिषी कह लीजिए या कोई भी, इनका नाम उर्दू इंग्लिश में मिला लीजिए, अबू जी नजूमी भी कह सकते हैं, अबू दाऊद 3904 नंबर की ये रिवायत है। फिर इसी तरह से कल्बी शिर्क भी हैं, दिल का शिर्क, ये बड़ा ख़तरनाक है, इनका ताल्लुक दिल से भी और ज़ुबान से भी है। मसलन नंबर एक, रियाकारी करना, मुस्नद अहमद 1727 0 इसकी हवाला है। अब आप सेकेंड थर्ड पेज खोल सकते हैं। ठीक है, क्या पता चला रियाकारी भी शिर्क है। फिर इसी तरह से नेक अमाल को दुनिया के मुफादात के लिए अंजाम देना, बुखारी की रिवायत है, या अब अगले पेज की पहली लाइन है इसका रेफरेंस। सेकंड पेज जो आपको मिला है उसका फर्स्ट पार्ट है बुखारी 6435। ठीक है, यानी क्या समझ आई इसमें बात कि किसी काहिन या आराफ के पास जाना भी था, अब कल्बी शिर्क में रियाकारी आ गई और नेक अमाल को दुनिया के फायदे के लिए करना। लोग समझे आप बड़ी नेकियां कर रहे हैं लेकिन असल में आप अपनी दुनिया बना रहे हैं आखरत की बजाय। ये बुखारी की रिवायत 6435 है। अब सवाल पैदा होता है, ये छोड़ दीजिए मैं दोहरा देती हूँ दोबारा, तीन किस्म से बंदा शिर्क करता है, बोल के कौली शिर्क, फेल कुछ ऐसे सरजद हो जाते हैं, और कल्बी। खतरनाक सबसे कौन सा? कल्बी, दिल का रोगी होता है। अब आगे नोट कीजिए शिर्क के नुकसान कितने हैं। आपके सामने आपकी शीट है, 20 नुकसान तो सिर्फ इधर लिखवाए हैं, आपको लिखाऊंगी और मैं आपको ये भी कह दूं इससे बहुत ज़्यादा और है। नंबर एक, सूरत अल अनाम 151 आराफ 33 में, इकट्ठा ही दोनों का एक ही रेफरेंस है, और वो क्या है कि शिर्क हराम है, शिर्क करना हराम है। हराम लफ्ज़ हम सब जानते हैं कितना शदीद है। फिर नंबर दो, इसका दूसरा नुकसान, शिर्क जुल्मे अजीम है, सूरत लुकमान 13 और मुस्लिम 327। नंबर तीन, शिर्क नाकाबले माफ़ी जुर्म है, माईदा 72, निसा 48 और 116। फिर नेक्स्ट, शिर्क मुजबे अजाब है, यानी अजाब होगा अगर शिर्क दुनिया से करते हुए गए, अल्लाह बाद में माफ़ कर दे लेकिन कुछ ना कुछ पकड़ ज़रूर होगी, सूरत मोमिनून 117 और शोरा 213। नेक्स्ट, शिर्क हलाक करने वाला गुनाह, बुखारी 2766। शिर्क कबीरा गुनाह है, बुखारी 4477 और मुस्लिम 86। अब आप इस वक्त तो चूँकि लिखने में पड़े हुए ना, लेकिन अगर आप देखें तो ये इतने बड़े बड़े नुकसान हैं जितना शायद किसी का पूरा घर, बंगला, गाड़ी, फैक्ट्री डूब जाए उससे भी ये बड़ा नुकसान है। फिर शिर्क का एक नुकसान कि मुशरिक अल्लाह के दीदार से महरूम होगा, सूरत कहफ 110 इसका रेफरेंस है। क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा इसको मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखानी, गुस्से की हद है। फिर मुशरिक आसमान से गिरने वाले की तरह है, सूरत हज 31। कौन आसमान से गिर के चीज़ कहाँ जाती है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जी आसमान से गिरा खजूर मटका। मुराद क्या है इससे कि मुशरिक जो है वो न दुनिया का रहता है न दीन का, न घर का न घाट का। फिर अगली चीज़, मुशरिक बदहाल और बेयारो मददगार होगा, सूरत बनी इसराइल 22। फिर नेक्स्ट, मुशरिक के नेक अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, कोई नेकियां करते हैं वो लेकिन अब शिर्क की वजह से ज़ाया होती हैं, सूरत अनाम 88। और सबसे बड़ा नुकसान, जिसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं, जिसकी कोई लायबिलिटी नहीं, कोई इंश्योरेंस कंपनी इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकती, और वो क्या है कि मुशरिक पर जन्नत हराम है, सूरत मायदा 72 जाकर देख लीजिएगा। मुशरिक जहन्नमी होगा। नेक्स्ट, अलम्बिया 98, बनी इसराइल 39। और एक और भी बड़ी तकलीफ दे बात है शिर्क में, और वो क्या कि मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं हो सकती, तौबा 113। कितना दुख की बात है, आज भी जो रिवर्ड्स है ना, कभी उनका ये गम तो सुने। एक ब्रदर है, सही उनका एक्सेंट मुझे नाम नहीं आता, तो उनका एक छोटा सा क्लिप देखा था, बहुत रोए और आयते पढ़ रहे थे, रब इरहम हुमा कमा रबयानी सगीरा, और उन्होंने कहा था मुस्लिम्स यू कैंट इवन इमेजिन इट हाउ बिग ब्लेसिंग यू हैव, और वो क्या कि योर पेरेंट्स आर मुस्लिम। तुम अपने पेरेंट्स के बारे में या उनके दुनिया से जाने के बाद दुआ तो कर सकते हो, लुक एट मी आई कैंट, कि मेरे माँ बाप कुफर पे मर गए हैं, मैं उनके लिए दुआ नहीं कर सकता। तो ये शिर्क का कितना बड़ा नुकसान है। फिर आगे देखिए, मुशरिक की शिफात भी नहीं हो सकती, अल एतकाद 7, ये एक बुक का नाम है, उसमें से आपको रेफरेंस दिया गया है। फिर इसी तरह मुशरिक नजस होता है, जी सूरत तौबा 28, इन्नल मुशरिकून नजस। अच्छा, हम कहते हैं नजस कब है, जब उसका रंग काला है, और वो पाकिस्तान या इंडिया में रहता है, ऐसे ही है ना हमारे यहाँ क्या क्या कल्चर होता है। और दूसरे मुल्कों में आप देखिए उन्हीं के सब कुछ खाते पीते हैं ना, लेकिन नजस कौन सा है, उसके अकायद गंदे हैं। और हाथ कब गंदे हैं, गुसल किया वाजिब था गुसल किया ही नहीं, जनाबत में और सारा दिन ऐसे ही घूम रहा है, तो दिल की गंदगी फिर जिस्म पे आती है। फिर नेक्स्ट थिंग, मुशरिकों के खिलाफ जंग का हुक्म है, सूरह तौबा आयत 5। फिर मुशरिक की कब्र पर उसे आग में जाने की वईद सुनानी चाहिए, इब्ने माजा 1573। फिर मुशरिक को किसी नबी की रिश्तेदारी भी फायदा नहीं देती, बुखारी 3350। और 19th पॉइंट क्या है, क़यामत के दिन मुशरिकों के माबूद इन्हें फ़ायदा नहीं देंगे, सबा 40:41। और मुशरिक हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, माईदा 73 और मुस्लिम 269। इतनी खराबियां हैं तो क्या शिर्क से बच सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट जी, शिर्क से बच सकते हैं हम, कैसे बच सकते हैं? मुस्तद अहमद की रिवायत है 19835, अबू मूसा अल अशरी इसके रावी हैं। एक दिन अल्लाह के नबी हमें खुतबा दे रहे थे, ज़रा सोचिए क्या वो खूबसूरत समा होता होगा जब अल्लाह के नबी खुतबा देते थे। आपने फरमाया, लोगो इस शिर्क से बचो क्योंकि इसकी आहट चींटी की आहट से भी हल्की होती है। अब यहाँ चींटी चल रही है तो आपको मुझे आवाज़ तो नहीं आएगी। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी जब इसकी आहट चींटी की आहट से भी हल्की होती है तो फिर हम इससे कैसे बच सकते हैं? सवाल कितना अच्छा उनका, बात समझ गए कि हमने तो पता ही नहीं चलेगा कि शिर्क आ गया। तो आपने फरमाया, हाँ तुम यूं कहा करो, ए अल्लाह हम इस बात से भी आपकी पनाह में आते हैं कि किसी चीज़ को जानबूझकर आपके साथ शरीक ठहराएं, और इस चीज़ से माफ़ी मांगते हैं जिसे हम जानते नहीं। ये मुस्नद अहमद की रिवायत 19835। यही दुआ आपको याद कराई जा रही है, यकीन करें ये दुआ याद करके जाइएगा, इंशाल्लाह शिर्क हमारी ज़िंदगियों से निकल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब इतनी डेंजरस चीज़ है तो हमें वो सारे रास्ते देखने हैं जहाँ से बंदा शिर्क पे जाता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। शिर्क के ज़राए कौन से हैं? ज़राए क्या मीन्स, वट आर द मीन्स टू इन्वॉल्व इन शिर्क? नंबर एक, गलुव, गुल्लू नहीं गलुव, एग्जेजुरेशन, किसी चीज़ को उसकी हद से बढ़ा देना। शिर्क का आगाज़ गलुव से हुआ और अल्लाह ने इससे रोका, सूरत निसा 171 इसकी रेफरेंस है। नंबर दो, बरकत हासिल करने के ज़राए, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से बरकत हासिल करने का हुक्म दिया है वहाँ तक ही रहना चाहिए। मसलन आप देखिए कि कुरान बायस बरकत है, कुरान ने खुद कहा मुबारकन हाज़ा किताबुन मुबारकन, हाँ क्योंकि ये हिदायत का ज़रिया है। लेकिन इसके मुकाबले में आप किसी पत्थर, किसी दरख्त, मज़ार, कब्र को बायस बरकत समझें तो ये शिर्क होगा। इसकी दलील तिर्मिज़ी की रिवायत है 2180 और मुस्नद अहमद 218 जिल्द नंबर 5 है। तो दूसरी चीज़ क्या मिली, पहली क्या थी सब बोलेंगे, गलुव एग्जेजुरेशन। नंबर इन सब की हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आगे, इसलिए आप लोग फिक्र नहीं कीजिए। दूसरी चीज़, बरकत हासिल करने में उन चीज़ों को समझ लेना जिससे बरकत देने का हुक्म नहीं है। तीसरी चीज़, अब आपकी शीट का यानी 4th पेज की बिल्कुल पहली लाइन है इसके रेफरेंस में, और वो क्या है, धागों, छल्लों, कड़ों। बाज़ लोग धागे बांधते हैं, ख़ासतौर पे काला धागा बच्चों को बांधा होता है, छल्ले पहने जाते हैं यानी रिंग्स, इस नियत से, ये नहीं कि हर रिंग मुराद है कि किसी कब्र से जाकर ले आए, कुछ पढ़ पढ़ा लिया, इसी तरह कड़े होते हैं बस कब्रों से मिलते हैं, सिल्वर चांदी के, इस तरह के धागों, छल्लों, कड़ों को बलाएं और मसाइब दूर करने का जरिया समझना। याद रखिए जब बंदा किसी मुसीबत में पहुंचता है ना तो वो वहमी हो जाता है, तो वहम प्रस्त होता है। अब आज भी लोग यही करते हैं, जब भी कोई मुश्किल पड़ी किसी कब्र पे गए और वहाँ जाकर कोई धागा छल्ला लेकर आ गए। आज इसकी एक बहुत ही लेटेस्ट मिसाल है, आप लोग जाकर आज घर के डेकोरेशन पीसेस चेक कीजिएगा, अनजाने में, मैं नहीं मान कहती कि जानबूझ के होगा, लेकिन आजकल डेकोरेशन पीसेस में एक चीज़ बहुत कॉमन की जा रही है और वो क्या है, ईवल आई। ब्लू, नेवी ब्लू बाहर का सर्कल होता है और अंदर फिरोजी होता है, बच्चों के खिलौनों में, और मैं किसी जगह थी तो मुझे उन्होंने दिखाया कार्टून्स में, असल तो वो दज्जालियत है ना, काना एक आंख, लेकिन ये चीज घरों में लगाना, आप तो कहते हैं हमने ऐसी लगा दिया, लेकिन उसको उतार दीजिए, क्योंकि उसके पीछे भी नजरे बद को दूर करना और खास तौर पे नीले और काले रंग को बबरकत समझना, इसका कॉन्सेप्ट आता है। ये सब चीजों को नहीं पसंदीदा किया गया, ये निकाल दिया जाता है। अरब लोग भी बच्चों को नजरे बद से बचाने के लिए उनके गले में छोटी छोटी ऐसे कोड़ियां सी बांध दिया करते थे। इस्लाम इससे रोकता है। इसकी दलील है सूरत जुमर 8, मुस्नद अहमद 17539। याद रखिए, अल्लाह के सिवा कोई मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला नहीं है। चौथी किस्म जो इंसान को शिर्क में मुबतला करती है, जरिया गैर अल्लाह की पनाह लेना। अरब लोग जब सफ़र करते तो किसी वादी में स्टॉप करते, दे टेक अ स्टॉप देयर, तो उनका ख्याल था कि इधर जिन होते हैं और वो हमें नुकसान देंगे, तो वहाँ उतर के क्या कहते, ए इस वादी के सरदार, हम तेरी पनाह में आते हैं। सूरह जिन आयत 6 इसके रेफरेंस में लिखी हुई है आपके पास। अल्लाह के नबी ने इससे मना किया और पनाह लेने के लिए दुआ सिखाई। आप जब भी किसी जगह उतरते तो आप वहाँ एक दुआ पढ़ते, आप मेरे साथ दोहरा लीजिए, आउज़ु बिकलिमातिल्लाही अत्तामाती मिन शर्री मा खलक मा खलक। तर्जमा क्या है, मैं अल्लाह के तमाम कलेमात की इसकी मखलूक के शर से पनाह लेता हूँ। ये मुस्लिम की रिवायत है 6880 नंबर की, ठीक है? तो ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। पांचवी चीज, झाड़ फूंक। जब किसी बीमारी में कोई मुबतला हो और बीमारी लाइलाज हो जाए, तो बाज़ लोग फिर झाड़ फूंक और दम का इलाज तरीका इख्तियार करते हैं। अल्लाह के नबी ने नजरे बद और जहरीले जानवरों के काटने पे दम की इजाज़त दी है जिसमें शिर्क ना हो। इसकी डिस्क्रिप्शन आगे लगाएगी, इसलिए यहाँ सिर्फ रेफरेंस नोट कर लीजिए। सही मुस्लिम 5732 लिखा हुआ है आपके पास, आप उसी के आगे लिखिएगा, बस ये गलती ना करिएगा कि अपनी शीट में लिखे, जो गलती लगे बाद में रिकॉर्डिंग से उसको दुरुस्त कर लें, ठीक है? जहाँ भी डाउट पड़े चेंज कर लीजिएगा। छठी चीज़, नेक आमाल से दुनिया चाहना। दुनिया की हिरस रखने वाले मुसलमान कुछ ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह के नबी ने अब्दुद दीनार कहा, अब्दुद दिरहम, दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा, अब्दे खमीसा। बुखारी की रिवायत है 2886। क्या पता चला, अपने आमाल से दुनिया तलब करना ये भी शिर्क है। अल्लाह माफ़ करे हम सबको और इससे बचाए। सेवन थिंग क्या है, अल्लाह के हलाल व हराम को तब्दील करने में उलमा और उमरा की इतात करना। यानी आपके आलिम किसी हलाल को हराम और हराम को हलाल कह दें तो आप उसको मान जाएं, और इसके रेफरेंस में वो मारूफ हदीस है जो आप सबको आती होगी, आदी बिन हातिम की। कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरे गर्दन में सोने की सलीब थी। क्रिश्चियन थे ये। आपने कहा, आदी बुत को तोड़ दो, सलीब को। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, आप तो रात को सूरत तौबा की आयत पढ़ते हैं, वही जो जी अपने उलमा और रहमान को, आलिमों को खुदा कहते हैं, हालांकि हम लोग तो ऐसा नहीं कहते। तो उस पर अल्लाह के नबी ने कहा था कि क्या तुम उनके कहे को हलाल और जो नहीं मना करे उसे हराम नहीं कहते? यानी विदाउट एनी दलील तुम अपने बुजुर्गों और के नाम पे चीज़ों को हलाल हराम नहीं करते? कहा, ये तो करते हैं। तो आपने फरमाया कि यही है अल्लाह के सिवा रब बनाना। ये तिरमिजी की रिवायत है 3095। आठवीं चीज, गैर अल्लाह पर भरोसे का इजहार करना। यानी अगर आप इसको समझें तो गज़वे अहद में शहीद होने वाले जो मुनाफिक थे वो क्या कहते थे, अगर ये हमारे पास होते माँ माँ तू ना मरे जाते। सूरत आल इमरान 156 में आता है। या मैदान जंग में गए तो मौत आ गई, ना जाते घरों में होते तो बचते। याद रखिए, लव कहना, काश हाय मैंने ये ना किया होता, ये चीज़ भी बंदे को शिर्क में ले जाती है। सूरत आल इमरान 154 में अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं, अगर इन अपने घरों में भी तुम होते और तुम्हारे नसीब में कत्ल होना होता तो तुम चल के आ जाते अपनी कत्लगाहों पे। बहरहाल, नवी चीज़, कब्रों पर मसाजिद की तामीर, शिर्क का जरिया। बुखारी 1341 और मुस्लिम 5 2 8। नंबर 10, कब्रों या मज़ारों की तरफ सफ़र करना। अब देखिए अपने इन गांवों को, इंडिया पाकिस्तान और मेरा ख्याल है बांग्लादेश में भी कुछ तो होगा ही, ऐसा देखा नहीं है मैंने, लेकिन आज हमारे मुल्कों का शिर्क ये है। किस सोच से सफ़र करना किसी कब्र या मज़ार की तरफ? नंबर 1, के वहाँ से बरकत मिले, मुसीबतें दूर होंगी, अल्लाह के नबी ने इससे मना किया, बुखारी 1189 नंबर। और 11वीं चीज़, शिरकिया मुकामात पर जाकर इबादत करना, ख़ास तौर पे किसी और कब्र के करीब जाके इबादत करना। कोई कब्र हो, कोई बुत हो, कोई ऐसी जगह जिसकी अजमत दिलों में हो, इस जगह पे इबादत करनी मना है। अबू दाऊद की एक तवील रिवायत है, 333, 3 दफ़ा 3 और 1, 3331, इससे बचना चाहिए। और 12वीं और आखिरी चीज़ क्या है? नाजायज़ वसीला बनाना, वसीले बनाना। इसकी दलील सूरत माईदा 35, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वसीले की बात आ गई, हमारे कल्चर का बहुत कॉन्ट्राडिक्ट्री इशू है वसीला। तो वसीला क्या है? किसी का कुर्ब हासिल करना। सवाल पैदा होता है कि वसीले से क्या मुराद है? ऐसा अमल जिसके ज़रिए रग़बत के साथ किसी का कुर्ब हासिल किया जाए। इसी तरह जन्नत का आला मुकाम भी वसीला। ठीक है, क्या पता चला कि इंसान को अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए बीच में किसी बुजुर्ग को, किसी हस्ती को, किसी नबी को, किसी वली को लेकर आना, ये चीज़ मना है। वो क्या कहता है? वाइजा साल का इबादी अन्नी फ़ैन्नी करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं तो बहुत करीब हूँ। तो लिहाजा अल्लाह के साथ कोई शिर्क नहीं करना चाहिए। सूरत माईदा आयत 35 को अगर आप देख लें तो आपको इससे एक बात पता चलेगी कि अच्छे काम, इबादत, आमाल सवाले, इनका वसीला हासिल करना चाहिए। मसलन आपका दिल कह रहा है कि आपकी दुआ कबूल हो, आप कहिए अल्लाह मैं पढ़ने जाती हूँ, मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है, अल्लाह मैं सब्र के साथ बैठी रहती हूँ, मैं बीच में इधर उधर नहीं देखती, मैं उठती नहीं हूँ, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो मेरी दुआ कबूल कर ले। 100% जायज़ है। इस पर एक लेक्चर भी है, वसीले की हकीकत, उससे डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ चंद नोट्स नोट कीजिए, बात पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि अहम टॉपिक है। इसी तरह आप देखिए आले इमरान 31 में अल्लाह सुबहाना ताला ने जो बात बताई है, और वो क्या है कि जो काम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए नेकियों की सूरत में किए जाते हैं, अल्लाह उससे राज़ी भी होता है। तो बेसिकली दो किस्में लिखी है। नंबर 1, वसीले की जो इकसाम 3 है, चले 3 लिख देते हैं, आपकी शीट में जगह बनी हुई है, बस इसकी हल्की सी वजाहत है। एक है शरई वसीला, वो क्या होता है? जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया किताब में, या नबी ने उसका अपनी किसी हदीस में बता दिया, वो जायज़ है। दूसरी किस्म होती है ममनू वसीला, प्रोहिबिटेड, ऐसे अमाल वसीला समझ कर किए जाएं ना कुरान में उनका जिक्र है, ना नबी की किसी सुन्नत में है, बल्कि इस्लाम की रुख के खिलाफ हों, इनको ममनू कहते हैं। तीसरी चीज़ है दुनियावी वसीले। याद रखिए कि दुनियावी वसीले ज़राए की हैसियत रखते हैं। ज़राए कैसे? मसलन आप देखिए कि मीन है ना, आप में यहाँ पहुँचे कैसे पहुँचे? आपके मेरे यहाँ आने का वसीला क्या बना? गाड़ी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं इधर बैठी हूँ, कुछ लोग उस हॉल में भी बैठे हुए हैं, ये माइक क्या बन रहा है? वसीला बन रहा है ना। बस ये दुनियावी वसीले बिल्कुल अलग चीज़ हैं। आपके हस्बैंड सुबह रोज़ उठ के जाते हैं, काम करते हैं, तिजारत, मुलाजमत, उजरत करते हैं, तो पैसे आते हैं ना। कोई कहे नहीं जी ये तो नाजायज़ हो जाएगा, मैं घर बैठा रहूँ और मेरे हिस्से का रिस्क आ जाए, ये गलत है। लेकिन अगर वो रिस्क के हसूल में फिर चोरी, ज़खीरा अंदोजी, सूद, ख़यानत को ले आए तो ये गलत वसीला होगा। बात समझ गए? यानी जायज़ काम नाजायज़ हो जाता है जब उसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी हो। इसी तरह आप देखिए सेहत का हासिल करना आपके मेरे लिए लाजमी है ना, हलाल दवा खा लीजिए, इलाज हलाल तरीके से जायज़ है, लेकिन आप हराम, जहरीली और नापाक दवाइयों से इलाज कराएं तो ये दुरुस्त नहीं होगा। तो क्या पता चला? हर चीज़ को हद से बढ़ाकर जब करेंगे तो गलत हो जाएगा। मसलन किसी जगह शादी करनी है, अब क्या हुआ कि रिश्ता डाला नहीं मिला, अब कहते हैं हमारा नहीं हुआ तो हम किसी जादूगर के जरिए जाकर कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो लड़का लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, तो ये शादी ये तरीका दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह किसी का माल चोरी हुआ, जाइए पुलिस को रिपोर्ट दीजिए, पुलिस जाए ढूंढे मिले, जायज़ वसीला, यू कैन डू इट। बट आप किसी आमिल जिनके पास पहुंच जाए, ज़रा चेक करो मेरी जो मेरा चोर मेरी चीज़ें किसने चुराई, ये नाजायज़ होंगी। बात समझ गए, खुलासा समझ गए। आखिरी चीज़ करके आपको इंशाल्लाह ब्रेक देती हूँ, मशरू वसीले कौन से हैं, जायज़, आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए इधर, जायज़ वसीले कौन से हैं, यानी व्हाट वी कैन डू। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और मैं कहती हूँ इसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ इतने से हिस्से की ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि आप वसीले को नहीं मानते, तो मैं वसीले को मानती हूँ। इस्लाम ने वसीले की 12 किस्में आपको इधर दे रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आप गौर व फिक्र करेंगे, बल्कि 13, 14, 15 आपके पॉइंट्स गिन के देखिए, 16 किस्में लिखी है वसाइल वसीले की। अब सिर्फ जल्दी में नाम लिख लीजिए, डिटेल्स हम फिर कभी पढ़ेंगे, और अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है इंशाल्लाह, तो लेकिन सिर्फ अभी आप कोड वर्ड्स ले लीजिए। नंबर एक, खालिस ईमान का वसीला। आपका मेरा ईमान सबसे बड़ा नेक अमल है, अजीम तरीन वसीला है, इसी के ज़रिए फिर आखरत की भलाइयाँ मांगी जा सकती हैं। कैसे? मसलन आप में से किसी को सूरत आले इमरान का आखिरी रुकू याद है? आले इमरान 193 लिखी हुई है, क्या कहते हैं अल्लाह को हम? रब्बना इन्नना आमन्ना, ऐ हमारे रब हम ईमान ले आए, मुराजे के इस ईमान को हम तेरे आगे पेश करते हैं, किसकी वजह से हमें माफ़ कर दे। तो अपने ईमान का वसीला दे सकते हैं। नंबर दो, नमाज का वसीला। नमाज अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा या अफसल तरीन अमल है। सहाबा किराम ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है, तो आपने कहा कि वक्त पर नमाज पढ़ना। सही मुस्लिम 252 इसका रेफरेंस है। तीसरी चीज़ है वसीले में रोज़ा। रोज़ा आला दर्जे की इबादत है, बेहतरीन वसीला। अबू उमामा नबी सल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल कोई ऐसा काम, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा काम बताइए कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आपने फरमाया कि तुम रोज़े रखा करो, इसलिए कि इस जैसी कोई इबादत नहीं। यह है निसाई 2221 नंबर। चौथी चीज़, हज का वसीला। हज आला दर्जे की इबादत और बेहतरीन वसीला है, बुखारी 1773 नंबर आपके पास नोट है। फिर उम्रे का वसीला। उम्रा इनफरादी इबादत है जिसका सवाब बहुत है, दुआ की कबूलियत और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, बुखारी 1773 नंबर, इसमें भी सेम रेफरेंस है दोनों का। छठी चीज़ जो आप वसीले में पेश कर सकते हैं, वो सदका दीजिए। अल्लाह की रज़ा के लिए खुशी के साथ पाकीज़ा माल उसकी राह में खर्च करना बेहतरीन और उम्दा वसीला है। ये रिवायत है बुखारी 6023 में। सेवन्थ है जिहाद, ये बहुत अहम है। जिहाद का वसीला यानी अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद से ये मामला शुरू होता है, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो जाकर मैदान जंग में भी कूदना पड़ता है। अफजल फजीला और अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी शान है। बुखारी की रिवायत 2790। आठवीं चीज़ है इस्तग़फ़ार। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से कहें अल्लाह मेरे से जो गलतियाँ और गुनाह होते हैं आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे गुनाहों से बचने का वसीला बना दें मेरी इस्तिग़फ़ार को। ये बिल्कुल जायज़ है कहना। आले इमरान 135 उसमें भी ये वही आयतें अगर आप गौर करें तो मिलती भी बात है। नवीं चीज़ है दुआ। दुआ का वसीला बनाइए, अल्लाह से दुआ मांगिए, सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे ज़रूर कबूल होगी, और मुश्किलात और परेशानियों में दुआ से बेहतर वसीला कोई भी नहीं है। इसकी दलील लिखी हुई है आपके पास, गाफिर 60, अलबकरा 186, तिर्मिज़ी 3524। दसवीं चीज़ जो आप वसीले में कर सकते हैं, वो दुरूद है। नबी सल्लम पर दुरूद भेजना दुआओं की कबूलियत का वसीला है, दुआ मांगने से पहले भी और बाद में भी, इससे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। अहमद, तिर्मिज़ी और सहील जामे 3389। ग्यारहवीं चीज़ें कुरान मजीद का वसीला। कैसे? इसकी तिलावत कीजिए, आला तरीन वसीला होगा आपके पास दुआओं की कबूलियत का। इसके वसीले से जो दुआ की जाए कबूल होती है। ऐसी महफिलों को पढ़ने पढ़ाने वालों की महफिलों को फरिश्ते घेरते हैं, और साहिबे कुरान से क़यामत के दिन क्या कहा जाएगा? इक़रा वरक़ा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, और जैसे दुनिया में तरतील के साथ पढ़ता था, आज भी पढ़। तेरी आखिरी मंजिल वो होगी जो तेरी आखिरी आयत होगी। सूरत ये अबू दाऊद की रिवायत 1464 नंबर है। तो क्या पता चला, कुरान पढ़कर दुआएं मांगिए वसीला ये बहुत प्यारा वसीला है। आप कह सकते हैं, मैं भी कह सकती हूँ, अल्लाह ताला मैंने ये मौजू पढ़ाया इनको, अगर आपको ये मेरा अमल पसंद है तो मेरा फलां काम कर दे। मैं कह सकती हूँ ऐसा, और आप भी अपने लिए ऐसी कह सकते हैं। 13वीं चीज़ बहुत खूबसूरत है, अस्माउल हुस्ना। अल्लाह जी नहीं, 12 हो गई, ये 13वीं है, बाद में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। जी सब कह रहे हैं 12वीं है कि 13वीं है? जी 12वीं है, तो फिर 12वीं होगी, मेजोरिटीज अथॉरिटी। चलिए 12वीं चीज़ क्या है? अस्माउल हुस्ना, आला और मकबूल तरीन वसीला, अल्लाह के नामों का वसीला। अल्लाह की हमदो सना कीजिए, इसकी बुजुर्गी आले अस्मा व सिफात को पेश करें, फिर दुआ करें कि या रहमान या रहीम या मालिक या कुद्दूस या सलाम। एक अरब स्पीकर है, इंग्लिश स्पीकर है, मेरे हाले नाम के अंदर कुछ चौधरी आता है, वो या सलाम बहुत बोलते हैं, या सलाम या सलाम, अच्छा लगता है। अल्लाह का कोई नाम जो आपके दिल में पड़ा हुआ ना, उससे मांगा करें। जैसे हम तो कहते हैं या अल्लाह दे देना, जल्दी कर जाना, जल्दी कर दे दे, नहीं, आपको सलाम अच्छा लगता है ना, अल्लाह पे प्यार आया है, या सलाम या सलाम। आप खाना खाना चाहते हैं, या रज़ाक या रज़ाक, जो नाम दिल में हो। इस पे एक कारी जिब्रील हैं, उनकी एक पूरी दुआ है, हर दुआ के शुरू में वो अल्लाह के नाम पढ़ते हैं। एक आध चीज़ें आपके लिए सेव की हुई हैं, देखते हैं अगर टाइम मिला इन पर आपको दिखाते भी हैं, लेकिन अस्माउल हुस्ना के वसीले से दुआ की जा सकती है। ये सूरत अल अराफ 180 नंबर में आप देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या है? मोमिन भाई की दुआएं लीजिए, अपनी मुसलमान बहनों और भाइयों की दुआएं लिया करें। एक मोमिन जब दूसरे के लिए दुआ करता है कि तुम मेरे लिए दुआ करो, ये करो, तो ये भी जायज़ है। और जब आप किसी के लिए करते हैं तो फरिश्ता आपके लिए करता है। ये बात तिर्मिज़ी 3562 में लिखी है। और फिर अगली चीज़, नेक आमाल का वसीला, खैर और भलाई के कामों से अजर भी मिलता है और दुआएं कबूल होती हैं। वो वाक्या सुना हुआ है, तीन लोगों के गार में पहुंचने का, हर एक ने अपनी एक नेकी थी ना, ये वही हदीस है जो आपके लिए लिखी गई है इधर, सही बुखारी 211 फोर्थ जिल्द है, और सही मुस्लिम 44 सेवन्थ जिल्द में आप देख सकते हैं ये सारा कुछ। और आखिरी चीज़, गुनाहों से बचने का वसीला, बहुत बड़ी बात है, इससे भी दुआएं कबूल होती हैं। बुखारी 3465 नंबर की हदीस है। आपको याद होगा उस शख्स ने क्या कहा था कि अल्लाह मेरी चचाजाद बहन थी, कज़न थी, मैं उसकी मोहब्बत में मुबतला था, लेकिन जब उसने मुझे तेरे नाम पे रोका तो मैंने उसको जाने दिया। तो गुनाह से रुक गया ना, तो अपने गुनाहों से रुके। मसलन गीबत करते थे आप, शौक था, बहुत अच्छी लगती थी, टेस्टी थी बहुत, अब पता चल गया कि ये तो मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, तो अब क्या करेंगे? हाँ छोड़ दी। आज आप जाकर अल्लाह से इस तरह दुआ करिए कि अल्लाह मैंने तेरे लिए गीबतें छोड़ी, अल्लाह मुझे गीबत बड़ी प्यारी लगती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, दुख सुख के नाम पे सहेलियों दोस्तों में भी, आपके लिए छोड़ा है, अब आप मेरी दुआ सुन ले, बिलीव मी। आप जरा इसी से तो फिर आपको अल्लाह से बातें करना आएगा। हमने एक रिवायती तरीका रखा हुआ है नमाज का, नमाज पढ़ती है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, चलो दी हाथ उठाओ दुआ मांगे, ये हाल है कि आप फ़ोन मिलाएं, सलाम अलैकुम वालेकुम, ठीक है ओके ख़त्म, और उसके बाद उसी से बातें करनी शुरू होते हैं। नमाज के अंदर जो दुआएं मांगते हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो कितने वसीले बने? 15 किस्में जायज़ हैं। अब चार पाँच किस्में लिख लें जो हराम है, बस ये थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, तसलियाँ देते देते ही आपको आगे वक्त ले जाएंगे। मुझे पता है आप नहीं थके हुए, जब आप थकते हैं मुझे एक सेकेंड में पता लग जाता है, पता है आपको? और वो कौन सा वक्त होता है? जब मैं कहती हूँ कि अब क्लास का वक्त ख़त्म हो गया, अब आपको घर जाना ही पड़ेगा। मैं तो नहीं थकी, आप भी नहीं थके हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वैसे बेक सेल है, खूब खाने खा के जाने हैं, एंड पे लेके जाने हैं। तो आ जाइए, हराम वसीले पांच। नंबर एक, औलिया अल्लाह और नेक लोगों से फरियादें करना। याद रखिए, अल्लाह के माँ सिवा को पुकारना, चाहे वो नबी क्यों ना हो, वली की बजाय, ये शरीयत के खिलाफ और हराम काम है। ऐसा वसीला इख्तियार करने वाला इस्लाम से निकल जाता है, पीछे पढ़ कर आए हैं आप। दूसरी बात, गैर अल्लाह के लिए नजरें मानना, ये करूँगी, नज़र मानती हूँ, कफलां कब्र पे जाके चढ़ावा दूंगी, गलत है। तीसरी चीज़, कब्रों पे जानवर कुर्बान करना, ये भी जायज़ नहीं। फिर इसी तरह किसी के हक का वसीला लेना, हक के वसीले से दुआ करना मना है। मसलन कैसे, ज़रा देखिएगा, मखलूक का अल्लाह पर हक कोई नहीं है, अल्लाह जो दे रहा है अपनी रहमत से दे रहा है। मसलन ये कहना है, अल्लाह मैं तेरे नबी और रसूल के हक के वसीले से दुआ करती हूँ, ये जायज़ नहीं है। सूरत निसा 32 इसके ऊपर आप नोट कर सकते हैं। फिर इसी तरह किसी की जगह, जाहो जलाल जैसे होता है ना, मर्तबे का वसीला लेना, मसलन ये कहना है, अल्लाह फ़लाँ तेरे नज़दीक नबी वली पैगंबर और कुतब और फ़लाँ फ़लाँ इससे दुआ करती हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। क्या पता चला बचिए, देखिए आपको 15 चीज़ें मिल गई, थोड़ी है जायज़ मशरू। आप आज जाकर एक आजमाएं, कल दूसरी, पूरे महीने में आप हर एक को दो दो दफ़ा आजमाएं, 30 दिन के आपको वसीले मिल गए। तो फिर आखिरी बात वसीले के मौजू पे क्या हुई कि वसीला जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। बट कितना, 15 चीज़ें और इससे भी ज़्यादा हैं ये जायज़ है, सिर्फ 5 किस्में मना है। अब चूंकि इसमें लफ्ज़ वली बहुत आया, याद रखिए मुस्लिम अकीदे में विलायत और वली का बहुत गहरा ताल्लुक है, तो इस पे भी चंद जुमले सुन लीजिए। वली कौन होता है? देखिए कुरान में तो अल्लाह ताला ने इस पे हमें हर चीज़ खोल के दी, लेकिन हमने कुरान पढ़ा ही कब है। वली का लफ्ज़ कुरान में बहुत जगह आता है और इसके, अगर मैं गलत ना बोल दूँ इस वक्त, तो 26 से ज़्यादा मानी है विलायत के। और अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का लफ्ज़ आप सूरह यूनुस में भी पढ़ते हैं कि जहाँ वली वो हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान भी लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अलग लेक्चर भी मौजूद है कि औलिया अल्लाह कौन कौन वली है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2-3 जुमलों में इसकी चंद बातें समझ लीजिए। पहली बात है, वली अगर अल्लाह को कहे तो जायज़ है, अल्लाह का नाम है अलवली। अस्माउल हुस्ना में से जाकर आपने बाद में, जब भी ये कोर्स पूरा हो जाएगा और छुट्टियों में, आपने अलवली नाम की तफसीर सुननी है, ये आपके असाइनमेंट में है और आप इंशाल्लाह इसको करेंगे छुट्टियों में। कौन सी छुट्टियाँ? दिसंबर की छुट्टियाँ, माशाल्लाह। ठीक है, दूसरी बात है कि वली को, यानी अगर फाइल लेंगे तो वली अल्लाह है, इट्स ओके, लेकिन अगर मफूल के मानी में इसको लिया जाए तो वो होता है जिसकी हिफाजत की जाए, तो ये चीज़ अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं है। याद रखिए, आला दर्जे की विलायत क्या है, जो मुझे आज के दौर में किसी ने कहा और मैं उस बात को 100% मानती हूँ, गौर से सुनिए, ये कोई इल्मी जुमला नहीं है लेकिन हकीकत पे मबनी जुमला है। उन्होंने कहा कि आज के दौर का वली वो है जो हराम से बचे, आज के दौर का वली वो ताजिर है जो सूद से बचे, और आज के दौर का वली वो है कि जो सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों की शादियां कर ले, और आज के दौर का वली वो है जो 5 वक्त मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़े। कितने लोग इससे इत्तफाक करते हैं? यस, दिस इज़ द स्टोरी। विलायत ये है कि सुन्नतों पे अमल कीजिए, नबी के तरीकों पे आ जाइए, बाकी कोई वली कामिल नहीं होता। याद रखिए, अम्बिया मासूम होते हैं, सिर्फ नबियों को कह सकते हैं, उनसे गलतियां नहीं होती, इसके अलावा नहीं। अच्छा, जहां लफ्ज़ वली आएगा वहां एक और लफ्ज़ आप सुनेंगे, करामत। तो करामत के भी चंद जुमले नोट कीजिए। करामत क्या होती है? इज्जत, शराफत और एजाज़ और इकराम, इसको करामत कहते हैं। इसके दर्जे हैं, करामत के दर्जे कितने हैं? नंबर 1, करामत आमा, आम खूबियाँ। देखिए अल्लाह ने आपको मुझे सबको कुछ ना कुछ करामतें तो दी हुई है ना, बोलना, कोई अच्छा बोलता है, कोई गुनगुना के बोलता है ना, कोई बहुत अच्छा बोले तो ये करामत है, अल्लाह की दी हुई। अक्ल, सोचना, ज़ाहरी शक्ल अच्छी किसी की, किसी का बातें अच्छा है, तो हर वो खूबी जो अमूमी तौर पे अल्लाह ने किसी एक को ज़्यादा दे दी है, किसी को थोड़ी दी है, वो उसके लिए करामतें आम है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, दूसरी होती है करामतें खासा, खास चीज़, स्पेशल, ये अफसल है, ये वो है जो लोग खुद एक्वायर्ड करते हैं। बात समझिएगा, सम ब्लेसिंग्स वी आर गिवन, इसको हम कहते हैं वहबी, गॉड गिफ्टेड, इंग्लिश में लिख लें सारे मसले हल हो जाएंगे, आप इतने बुरे फेसेस ना बनाया करें, वैसे बनाते हैं तो फिर मैं ज़रा अपनी उर्दू डाइल्यूट कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम सब के जितनी भी ब्लेसिंग है उसमें 2 किस्म है, नंबर 1 गॉड गिफ्टेड है तो सारी, बट सम आर एक्वायर्ड, हम अपनी मेहनत से एक्वायर्ड कर रहे हैं ना। इस वक्त भी आप जो सारा सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, आप कोशिश करें, घर बैठे रहते आपको इतनी चीज़ें ना मिलती ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आम चीज़ें जो अल्लाह ने हर एक को दी हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम दी। दूसरी तरफ जो दूसरी चीज़ें हैं वो अल्लाह सुबहाना ताला ने ये सारी करके खास दी, उसको आप कोशिश से हासिल करेंगे। और आज के दौर की सबसे बड़ी करामत, मुश्किलात के मुकाबले में ईमान पे जमे रहना। और अगर आप मुझसे पूछें ना, तो पीयर प्रेशर से निकल कर अल्लाह प्रेशर में आना, ये करामत है। सारा खानदान एक डगर पे चल रहा है, वो शादी में नाचना कूदना चाह रहे हैं, वो अफरा तफरियाँ मचाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं नहीं मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मैं अमेरिका से आई हूँ। वो कहेंगे आप अमेरिका से आई हैं कि मक्का से आई हैं? बिलीव मी, ये कमेंट मिला था हमें भी किसी दौर में, लगता तो नहीं आप अमेरिका से आई हैं। कई लोग हैं, यकीन करें, बड़ी पर्सनल बात बताने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड अमेरिका के ही बॉर्न एंड रेस्ड, बॉर्न तो नहीं थे, रेस्ड हैं इधर के, 2-3 साल की उम्र में आए। फिर जब मेरा उनके साथ मामला तय हुआ, और उसके बाद फैमिलियों को, फैमिली के लिए एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना जब दीन के नाम पे रिश्ते हों, फिर जब लोगों ने इनको देखा तो पूछा है सच्ची सच्ची बताओ ये अमेरिका में रहता है कि मक्का में रहता है? उनके गेटअप हाल हुलिये को देख के मेरी फैमिली के बहुत सारे लोगों को ये लगा कि मेरी शादी तो सऊदी अरब होनी चाहिए थी, अमेरिका क्यों हो गई? क्योंकि लोगों का ख्याल है सऊदी अरब जन्नत, जन्नती लोग वहाँ रहते, और अमेरिका वो मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं खुद भी इधर हूँ। याद रखिए, आज के दौर में बाहर के माहौल से पाक रहना करामत है। आप अपने बच्चों को वलीउल्लाह बनाइए, और ये माएँ बनाएंगी इंशाल्लाह ताला, आप जैसी माएँ जो इतने शौक से ये सारा कुछ कर करा रही हैं। तो ये विलायत जो है क्या है कि आज सारी दुनिया एक काम के, आपके नहीं ये गलत है, अबू बकर से नहीं कल सीखा, अगर आज अबू बकर जिंदा होते तो वो वली थे, वो थे वली कामिल। सारी दुनिया के आगे टक्कर ले ली कि जो नबी के दौर में करते थे आज भी करना पड़ेगा। तो बहरहाल विलायत का दर्जा क्या है कि अच्छे काम करना। और याद रखिए, ऐसी आदत, हरके आदत बोलते हैं उसको, जिसको ऑब्वियस कह रहे, गलत चीज़ें छुपाते हैं, ये पानी पे चलते हैं, ये एक टांग पे चलते हैं, ये सोए नहीं, ये जागे नहीं, ये बेकार बातें, ये शोबदाबाजी है। फलां आलिम वो कभी जाग सोए ही नहीं, तो अल्लाह तो कहता है ला ताखुज़ु हुसीना तुम वला नौम, ऐसी चीज़ों को छोड़े। आखिरी बात इस औलिया कराम के टॉपिक में कर लीजिए कि हम क्या रवैया अख्तियार करें औलिया कराम से। चलिए, हैं चंद लोग दुनिया में माशाल्लाह, उन्होंने अपने नफ्स पे चोटें लगाई, मुजाहदे किए, अल्लाह ने उनकी सारी कोशिशों को कबूल कर लिया, अब हमारा उनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए? तो इसमें 4 पॉइंट्स आपके पास बने हुए हैं शीट के अंदर, देखिएगा। नंबर एक, औलिया कराम का इकराम करना चाहिए, इन्हें अजियत नहीं पहुँचानी चाहिए, शर्त यह है कि वो अल्लाह के वली हों, यानी कानू यत्तकून और आमनू की कैफियत हो। ये बुखारी, इसका रेफरेंस में लिख लीजिए, यानी सही बुखारी की हदीस से एक बात जो मिलती है कि जो लोग हकीकत में ईमान लाकर तकवा की जिंदगियां बसर कर रहे हैं, शरीयत पे अमलकार करते हैं, पैरोकार हैं, सुन्नतों के खूगर हैं, आप उनकी इज्जत कीजिए, मजाक ना करें। और यहाँ आज एक छोटा सा वादा और लूँगी आपसे, और ये असाइनमेंट में लिखें सारे वादे, क्योंकि तभी याद रहेंगे। आज के बाद किसी लफ्ज़ जिसमें मौलवी आता हो उसका मजाक नहीं करना। सारे लतीफ़े, जोक, स्लाइड्स जिसमें दीन के नुमाइंदों को मौलवी कहा जाए और हलवे पूड़ियों का जिक्र हो और मुर्गियों का जिक्र हो, नहीं मेरी ज़ुबान से आएंगे। आपको क्या पता वो क्या, वो अल्लाह के बंदे हैं, वो कितने नेक हैं, वो कितनी सादा गज़ा खाते हैं। सिर्फ लफ्ज़ मौलवी कह के आपने बना दिया। यकीन करें, चंद दिन पहले इतनी कड़वी स्लाइड थी किसी की कि दिल मेरा चाहे मैं खूब बोलूं, और उससे भी ज्यादा मुझे रोना आया जब उस पर किसी ने कमेंट दिया एक्सीलेंट मौलवी लफ्ज़ के साथ। नहीं करना आपने मैंने मजाक, किसी दीनदार का मजाक ना उड़ाए। मैं कहती कोई अहले शिर्क है, कोई अहले बिदा है, आपके मसलक से नहीं, आपके फिरके से नहीं, आपकी जमात से नहीं, अपेरेंटली उसके अकीदे में शिरक है, लेकिन आप में उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। क्यों? कम अज़ कम उसने अपना हाल हुलिया तो इस्लाम का बनाया हुआ है ना, आज तो लोगों का इस्लाम छुपा पड़ा है। ठीक है, तो पहली बात, इनका इकराम करें जब वो अल्लाह के दीन पे अमल करते हैं। दूसरी बात, औलिया अल्लाह की या औलिया की परस्तिश नहीं करनी, आंखें बंद करके, जिसको आप पर्सनैलिटी वर्शिप कह लीजिए दूसरे लफ्ज़ों में, ये नहीं करनी इंशाअल्लाह ताला, इससे आपने मैंने बचने की कोशिश करनी है। फिर इसी तरह से अगली चीज़ क्या है कि आप इनकी सिफारिश पे भरोसा करके अमल ना छोड़ें कि कोई फलां वली या वलीउल्लाह है, मैं उसके नाम की न्याज दूंगी और मेरी वो सिफारिश करेगा। और औलिया से फरियाद रसी की दरख्वास्तें भी नहीं करनी, वही बात है कि मेरी इनके आगे और इनकी रब के आगे। तो विलायत पूरी हुई तो तबरुक शुरू हो गए। ये एक से एक तोहफा है। आप किसी एक दरगाह पे जाएं, आपको ये सारी टर्म सुनने को मिलेंगी। तबरुक क्या होता है? बरका से बरकत हासिल की जाए। कुछ चीज़ों में अल्लाह ने खुद ही बरकत रखी हुई है, मसलन जमजम है ना, अजवा खजूर, इसमें बरकत है। लेकिन तबर्रुक की शरई हैसियत क्या है कि जिन चीज़ों में अल्लाह ने रखी है उससे ले लीजिए और जिससे रोका है उससे रुक जाएं। सवाल पैदा होता है जायज़ सूरतें कौन सी हैं। 6 पॉइंट्स आपकी शीट में बने हुए हैं, लिख लीजिए। बरकत हासिल करने की क्या सूरतें हैं जायज़? नंबर एक, बैतुल्ला का हज और उम्रा, तवाफ करना, हिजरे अस्वद और रुकने यमानी का बोसा लेना, इसके करीब बैठना और दुआएं करना, ये जायज़ है। दलाइल सबको आते हैं इसके, मुश्किल नहीं, इसलिए नहीं मैंने नोट करवाया इधर। और वो क्या है कि ये हज़रत उमर का कौल ही लिख लें, या हजर अंतस हजर, ए हजर तू तो पत्थर है, मैं तुझे कुछ ना करता, मैं कभी ना चूमता अगर मैंने नबी सल्लम को ना देखा होता। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ जिससे आप बरकत लेंगे वो आबे जमजम पीना, सर पे बहाना, पी कर दुआ करना। इन सब के दलाइल आप किसी भी किताबुल हज में ले लें, मैंने इधर नहीं लिखवाए। तीसरी चीज़, 3 मस्जिदें, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा की ज़्यारत करना, इनमें नमाज़ें अदा करना, एतकाफ़, ज़िक्र और तिलावत करना जायज़ है। चौथी चीज़ है दूसरी मसाजिद में बार बार आना जाना, नमाज़ें पढ़ना, तस्बीह करना और तालीम के हलके आबाद रखना और तिलावत करना, ये हैं बरकत के हसूल की चीज़ें। और फिर अगली बात ये है कि नेक लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आप चले जाएं, नेक लोगों के साथ जीने और मरने की दुआ करना, ये भी जायज़ है। हज़रत उमर की दुआएं मौजूद हैं, हज़रत यूसुफ़ की मौजूद है कुरान में, क्या अलांत वली फ़िर दुनिया व फिल आखिरा, और क्या हज़रत इब्राहिम की दुआ क्या थी, अल्हिकनी बिस्सालिहीन। तो क्या है हसूल बरकत का जरिया? नेक लोगों का साथ मांगिए, और यकीन करें कोई एक नेक मिल जाता है हमें भी नेक बना देता है। और फिर छठी और आखिरी चीज़ इसमें क्या है, अहले इल्म की मजलिसों में बैठना बरकत का बायस है। शहीना पाकर ज़रा वो वीडियो रेडी करें, नेक लोगों की मजलिसों में बैठना बरकत का बायस है, इससे ईमान, यकीन, तकवा, परहेजकारी और अच्छी बातें मिलती हैं, फिर वहाँ दुआएं की जाएं कबूल हैं। इस पे इंशाल्लाह इस वीकेंड पे आप एक लेक्चर सुनेंगे कमिंग सैटरडे को, बिटवीन 1 टू 4 एक प्रोग्राम है ऑनलाइन पे ही होगा सैटरडे को, उसमें बरकत वाली ज़िंदगी यानी बरकत क्या होती है इसके मौजू में कमिंग सैटरडे को आप सुनेंगे। अब एक आखिरी चीज़ इसमें बरकत के नाते से है कि हम कैसे बरकतें हासिल करें, क्या असूल है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट बरका। नंबर एक, बरकत के हसूल के अमाल की हैसियत मुस्तहब है, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं। यानी आप जैसे अभी मिसालें दी हैं, ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप जमजम पी कर दुआ करें, बट इट्स रिकमेंडेड, ये मुराद है। दूसरी बात है, बरकत हासिल करने के लिए कोई गलत या हराम काम नहीं कर सकते आप, क्या आप इसको जायज़ कर लूँ क्योंकि इससे बरकत मिले। तीसरी बात, बरकत के हसूल शिफात और वसीले के लिए मुशरिकाना रुझान बहुत आम है, हर वो काम जिसमें शिर्क या कुफर हो उसको छोड़ दीजिए, इसकी इजाज़त नहीं। फिर हमारी मजलिसों में बरकत कब होगी? जब वहाँ ईमान और तकवा होगा, किसी को नेक करार दे देने से, किसी जगह झंडियाँ लगाने से, इत्र की बारिश करने से, खुशबुएं बखेरने से, वो मजलिस बरकत वाली नहीं होती। और आखिरी बात क्या है कि किसी ऐसे शख्स से बरकत की तवक्को भी नहीं रखी जा सकती जो मालो दौलत और इज्जत के हसूल के लिए विलायत का दावा करता है। आप नहीं कर सकते कि पीर साहब ने ये कहा और वो कहा। आज लोगों ने ज़िंदगी में अपनी कब्रें बनाई हुई, अपनी गद्दियाँ पक्की की हुई हैं, बिलीव मी, तो ये सारी चीज़ें नाजायज़ होंगी। एक आखिरी चीज़ बिदत रह गई है, हालांकि इसका ताल्लुक ईमान बे रसूल से है, मैं वहाँ थोड़ा टच करूँगी, लेकिन चूँकि अकीदा पढ़ रहे हैं ना तो लिख लीजिए बिदत क्या होती है। उतनी देर में लाइट बंद करके आप रेडी करिए, आपको स्ट्रेच में इंशाल्लाह एक दो वीडियो दिखाते हैं तो उससे आप फ्रेश हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिदत क्या होती है? नंबर एक, हर वो काम जो अल्लाह के नबी सल्लम ने नहीं किया या करने का हुक्म नहीं दिया। इसकी दलील सही बुखारी 2697 और अबू दाऊद 4607 और तिर्मिजी 2673 सेवन सिक्स, यानी एक ही हदीस तीन डिफरेंट बुक्स में आज जाकर आप खोल के देख लीजिएगा। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद शरीयत में नहीं, वो काम मर्दूद है। ठीक है, अब बिदत की इकसाम क्या है? नंबर एक, इबादात में बिदत। हमारे यहाँ ये बड़ी आम है, बहुत ही मारूफ है। अल्लाह ताला उन सबको और हम सबको भी हिदायत दे दे। तो बिदत की इकसाम नोट कीजिएगा। नंबर एक, इबादात में किसी ऐसे काम को इबादत समझ के करना जो अल्लाह ने नहीं कहा। मसलन तालियां, सीटियां, बांसुरियां, नाचना, राग रंग, कवालियां, ये सब इसमें आता है। सीधी सी बात है, सूरह अनफाल 35 की तफसीर जाके सुन लें, आपको मक्का वालों की बिदात समझ आ जाएंगी। खाना काबा में जाकर सीटियां बजाते थे, तालियां पीटते थे, आज हम मुसलमानों ने भी ये कुछ किया। फिर दूसरी चीज़ क्या है, यानी ऐसी चीज़ जिसकी असल शरीयत में है मगर उसकी असल जगह से हटाकर दूसरी जगह कर देना। मसलन ईद के दिन रोज़ा रख लें, रोज़ा जायज़ है, आप ईद के दिन रख लें, ज़्यादा सवाब होगा। शक के दिन रोज़ा रख लेना, या ममनू औक़ात में नफिल पढ़ना, ये भी इबादत में बिदत होगी, यानी नया काम होगा। दूसरी चीज़ जिसको बहुत सारे लोग बिदत समझते भी नहीं, वो है मुआमलात की बिदत। ऐसी चीज़ की शर्त लगाना जो किताब और सुन्नत में नहीं। हदीस सुन लीजिए, सही बुखारी 2560, तो आपको बात समझ आ जाएगी। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने लोगों से खिताब किया और फरमाया, कुछ लोगों को क्या हो गया है जो मामलात में ऐसी शर्तें लगाते हैं जिसकी कोई जड़ ना तो अल्लाह की किताब में है और ना हदीस में, कह लीजिए। हाँ, जो ऐसी शर्त लगाए तो वो गलत है, और अल्लाह की शर्त मजबूत है और हकदार है। बुखारी की 2560। इसको समझिए, मिसाल दूँ, बड़ा मारूफ जुमला है, मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, और बाप क्या जुमला बोलते हैं, मैं तुम्हें आँख करता हूँ, ये बिदत है, बस इतनी समझ लें। और शोहर बीवी के रिश्ते की बिदत क्या, ना तुम्हें रखूँगा ना तुम्हें छोड़ूंगा, बात समझ गए। तो मामलात में ऐसी चीज़ें हैं, और याद रखिए कि इसके बाद फिर दीन तो बिल्कुल ही बिखर जाता है ना। फिर इसके बाद चंद चीज़ें आपकी स्लाइड पे, सिर्फ देख लीजिए, बाद में जाके इसको पूरा कर लीजिएगा। इल्मे नजूम भी अकीदे में आता है। मैं चाह रही हूँ कि आज हम ये पहला टॉपिक पूरा कर लें, कल हमने आगे माशाल्लाह मुख्तलिफ और पांच चीज़ें पढ़नी है। आज तक तो अभी सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी ना, इल्मे नजूम मना है, हराम है। सितारों से किस्मत मालूम करना कराना, सूरत अल-अनाम 97, अल्लाह कहते सितारों को इसलिए पैदा किया कि उससे रास्ते मालूम करो। इल्मे नजूम जादू के दर्जे में शुमार होता है। इब्ने अब्बास ने कहा, जिसने सितारों का इल्म सीखा गोया उसने जादू का एक हिस्सा सीखा, फिर वो सितारों के इल्म में जितना आगे जाएगा उतना उसके जादू के इल्म में इजाफा होगा। यह अबू दाऊद की रिवायत है 3925। क्या पता चला, किसी किस्म की एस्ट्रोनॉमी या पामिस्ट्री या नजूमीपन, ये सब कुछ नाजायज़ है। इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में कि इसको छोड़ दो। और जादू एक इतनी, अब इसी में जादू भी आदत है ना, तो जादू के लिए मैं तो आपको एक सेमिनार का ही लिंक दूंगी और आप इनके असाइनमेंट में डाल दीजिएगा, जादू A to Z। हमने एक सेमिनार किया हुआ, अगर आप ऐप के ऊपर भी जाएंगे तो आई थिंक सो मैजिक A to Z। लंदन में हमने ये 4-5 साल पहले किया था सेमिनार, पूरी बुक पढ़ी थी, अब्दुल्ला बिन बाज की बुक थी और उसी के रेफरेंसेस ज़्यादा मैंने दिए थे। जादू के बारे में याद रखिए, जादू हराम है। नंबर एक, जादू बरहक है, इट्स यानी जादू हो सकता है, होता है, इसमें कोई शक नहीं। सूरत बकरा 102, इसकी दलील है सूरत यूनस 81-82, तोहा 67-79 और बुखारी 615-6857। तो जादू हक है, हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जादू सीखना सिखाना हराम है। जादूगर करने कराने वाले को इस्लाम से निकलने की धमकी भी मिली हुई है, और अगर मुस्लिम हुकूमत होगी तो उसको कत्ल भी किया जाएगा। फिर इसी तरह जादूगर जो होते हैं शैतानों से खिदमत लेते हैं, इसकी चंद किस्में लिख लीजिए। मुझे पता है आप में से किसी ने नहीं करना कराना, इंशाल्लाह ना करना है ना तोड़ कराना है। तो जादू की इकसाम कौन सी हैं? नंबर एक, शादी में रुकावट डलवाना, इसलिए जादू करना, बीवी के करीब ना आ सके शौहर। फिर सहरे तफरीक, रिश्तेदारों के दरमियान नफरत, यानी सास जाके सास के खिलाफ तावीज़ लाना, बहू के खिलाफ लाना। फिर इस तरह सहरे इस्तहाजा, औरतों को एक ब्लीडिंग की बीमारी हो जाती है इसकी वजह से कि वो कभी भी अपने आप को पाक महसूस नहीं करती। फिर इसी तरह सहरे मोहब्बत, ये तो सारे ही आशिक हैं इसमें हैं, और फिर सहरे जुनून, जुनूनी हो जाते हैं बाज़ लोग, देखने में पागल लगते हैं लेकिन असल में जादू हुआ होता है उन पर। फिर सहरे इमराज, कई बीमारियां हैं जो जो असल में बीमारी नहीं, जादू होता है। फिर इसी तरह एक बेख्वाबी का जादू होता है, रातों को नींद नहीं आती, आप कहेंगे सारे ही ऐसे हैं। इसको सहरे हवातिफ कहते हैं, गैर हाजिर गैर दिमाग रहना। फिर इस तरह सुस्ती और काहली का जादू, इसको सहरे खमूल कहते हैं। सहरे तखयल, नहीं नाम आते ना लिखिए, बस जो समझ आता है लिख लें। वहम में मुबतला करने वाला एक जादू होता है, आपको हर वक्त वहम ही हो रहा है, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। इस तरह भांचपन, औलाद पैदा होने के काबिल नहीं रहता बंदा, ये भी जादू है। जादूगर की सज़ा क्या है? हज़रत जुंदुब की रिवायत है, हवाला लिखा हुआ है आपके पास, तिरमिज़ी 1460। जादूगर काबले कत्ल है, इसको कत्ल किया जाएगा, और इस पे बाद सहाबा ने अमल भी किया था। तो क्या पता चला कि जादू करना कराना, इसके सारे मामले ख़राब हैं। आखिरी टॉपिक जिसमें इंशाल्लाह हमारा अकीदे का पहला टॉपिक पूरा हो जाएगा, और वो क्या है? दम। दम, दम के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है? जादू जब होता है ना तो दम ज़रूर होता है, इसको नुशरा कहते हैं अरबी में, जिस पर जादू किया जाए, अगर इस पर दम किया जाए। तो इसके बारे में एक बुक है, दम ज़रिया इलाज, इंशाल्लाह आपको मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि हम यहाँ भी पढ़ेंगे। जो आपका जनवरी से सेशंस शुरू हो रहे हैं, वो छोटी दुआओं की बुक है, यकीन करें आप खुद फील करेंगे। मैं मुझे गवाही दी किसी ने, बीमार थी, रहती थी, जो भी थी, और अल्लाह के हुक्म से दुआ अल्लाह ताला दिल में डाल देता है बात। मैंने उन्हें कहा कि ये सीरीज़ है, आप सुन ले। मेरा क्या ख्याल था कि ये सुनेंगी तो इनको अपनी बीमारी की वजह समझ आएगी, हुआ क्या, उससे भी बढ़ के वो सुनती कि उसमें दुआएं हैं। छोटा सा बुकलेट है आपके लिए, यहाँ हम ऑर्डर कर रहे हैं, इंशाल्लाह पानी की तरह बांटेंगे इस मुल्क में। मैं कह सकती हूँ कि आपके बहुत सारों के मसाइल उस दुआओं को पढ़ने से हासिल हो जाएंगे। उन्होंने जब वो पढ़ा सुना, सब ठीक हो गया। बाद में जो बात मेरे समझ में आई वो क्या है, उन्होंने जो बुक सीरीज सुनी, कोर्स हुआ था उसको अटेंड किया, रोज़ जाती थी, दुआएं दोहराई जाती थी, पढ़ते थे, याद करते थे, उनकी बीमारी दूर हो गई। तो क्या पता कि हम सब भी किसी ऐसी बुक के पढ़ने के मुंतजर हों। जिसको बीमार देखें फैमिली में, घरों में, इसका लिंक दीजिए, और ऑनलाइन पे इसका लिंक डाल भी देंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दम जायज़ भी है, ठीक है, शराइत के साथ है, कुछ चीज़ें इसमें पाबंदियाँ हैं। इस पे तो मैं कहूँगी आप सारी वो बुक सुन लें, बहुत ऑथेंटिक बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, दम ज़रिया इलाज है। इसमें दो दुआएं हैं, ये आप मेरे साथ दोहरा लें, ये आपकी शीट की आखिरी पेजेस हैं, आज नोट करेंगे आप। सही बुखारी 33 3771 है, मिलके पढ़ते हैं, आउज़ु बिकलिमात इल्लाही अत्तामती मिन कुल्ली शैतानिन वहामतिम वमिन कुल्ली आइनिन लामतिन। इसका मतलब क्या है वो लिख लीजिए आप इस दुआ के नीचे शीट पे। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के पूरे पूरे कलेमात के ज़रिए, एक शैतान से और हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुँचाने वाली नज़रे बद से। इसी तरह आपको तय कि नबी सल्लम पर दम किया था जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, इसको भी दोहरा लेते हैं, बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शयिन युजीका मिन शर्री कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यश्फीका बिस्मिल्लाही अरकीका। ये सही मुस्लिम की रिवायत 5700 है। क्या तर्जमा है? अल्लाह के नाम से हर उस चीज़ के शर से जो आपको तकलीफ़ देने वाली हो, या हर नफ्स या हसद करने वाली आँख के शर से मैं आपको दम करता हूँ, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। तो क्या पता चला कि तावीज़ गंडे कड़े गूंगे तागे बांधने झाड़ फूंक तो जायज़ नहीं है, मसनून दम किए जा सकते हैं जो अल्लाह के नबी ने करके दिखा दिए। फिर इसी तरह नज़रे बद भी है। सवाल पैदा होता है क्या हम आयतें लिख कर गले में लगा लें, लटका लें, जिसको हम क्या कहते हैं, तावीज़। हमें इसकी कोई दलील नहीं मिलती कुरान सुन्नत से। इवन सलफ सालेहीन इस चीज़ पर मुत्तफिक थे कि इस तरह का अमल नबी सल्लम और अस्हाब रसूल ने कभी नहीं किया। इसको अरबी में तमीमा कहते हैं। तो अगर किसी बच्चे के गले में कोई धागे में बांधा हुआ है, आज जाके काट दीजिए। हदीस में आता है कि अल्लाह उसी धागे के और उस तावीज़ के सपुर्द आपको कर देगा। नजरे बात क्या होती है? जायज़ है, हो जाती है, इससे बचने के लिए वो सारी पेशबंदियां लीजिए जो कि सुबह शाम की दुआओं की सूरत में है, हलाल चीज़ों से अपने आप को रखिए और हासिद के हसद से बचें। आखिरी सूरतों में हमने इसके ऊपर काफ़ी बात की थी। अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें नज़रे बद से बचाए, नेमतों के एक्सपोजर से भी तो बचें। ये मुझे नहीं पता प्रोफाइल पे इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें देख कर भी कोई नज़र लग जाती है कि नहीं, ये मैं चेक करूंगी इसका शरई मसला क्या है। पहले तो कोई देखता था आके ना, अब तो आप मिले ना मिले लोग आपको देख लेते हैं। तो अपनी प्रोजेक्शन से बचें, सेल्फ प्रोजेक्शन नज़रेबाद और जादू में लोगों को डालती है। अगर किसी की नज़र लग जाए तो एक गुसल होता है, वो उस बुक में आप डिटेल से पढ़ें क्योंकि शरई मसला मैं अपनी जल्दी से नहीं बताना चाहती। लेकिन सुबह शाम सूरत फलक नास और इस तरह की दुआएँ पढ़ते रहें। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें सही और अकीदा बना दें और हम ऐसी हर चीज़ से अपने आप को बच बचा लें जो कि उसने ये अपनी किताब और नबी की हदीस से हमें बता दी है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना वो पहला दिन का तवीज़ खोल लीजिए। क्या चीज़ पूरी हुई? तौहीद का टॉपिक, यानी ये आप ये पेज खोल लीजिए, बस इस पे रुकते हैं इस नाते से। अकायद में हमने क्या पढ़ा है? ईमान बिल्ला। लेकिन यही तो सारी बात है। शायद आप में से किसी को, एक मिनट, आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं और महफिल की वो भी चली जाती है बरकत। देखिए कि ये कैसे हम इतनी जल्दी पढ़ लें, अल्लाह की हस्ती, उससे ताल्लुक़, उसकी बातें, बाकी चीज़ें तो उसी के अंदर आती हैं। तो ज़रूरत थी कि हम इस मौजू को तफसील से पढ़ें। जिस अल्लाह की बातें इतने दो तीन दिन से सुन रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो देखिए। इसके दौरान बोल तो नहीं सकते आप, रियली उठें, खड़े हों, स्ट्रेच लें, एक दूसरे के कंधे दबाएं, खड़े हो जाएंगे सारे। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि वाकई अल्लाह रब कैसे है। जी सुनाइए।
आज की महफिल अगर मेरे मियां सुन लेते तो आप ही क्लास में
आते। आप उनको जाके सुनाइएगा।
मैंने कल पूरा लेक्चर एक घंटे का ऑस्ट्रेलिया अपने बच्चों को सुनाया।
कितनी फ्री कॉल थी कि पैसों की? व्हाट्सएप को माशाल्लाह बड़े जवाब होंगे अगर वो करें। बहरहाल आप देखिए ज़रा ये किसने बनाया, ये उस रब की बातें आप और मैं उस दिन से पढ़ रहे हैं। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत और अपनी मार्फत भी दे। एक एक परिंदे को देखिए और फिर कहिए कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद रब्बिल आलमीन। मैं सोच रही थी कि अगर ये परिंदे आर्टिफिशियल होते तो कितने के होते। शुरू से लगाइएगा। शुरू से अब इसको देखें ना, अल्लाह की मोहब्बत। खड़े हो जाए थोड़ा सा फ्रेश हो। दबाएं कंधे एक दूसरे के। शब इस आवाज़ को दबा दें जरा सा ना, थोड़ी नहीं नहीं हल्की। साथ बर्ड्स को देखते रहिए जो नहीं दबा रहे एक दूसरे के नाराज किए। अल्हम्द ये देखे ऐसे लग रहे ना चिड़िया भी लाइला कर रही है। ये देखे कितना ऐसे दबाएं कि दोनों एक दूसरे के दबा रहे हैं। अब देखें ये जो नशीद है ना, इसमें हालांकि थोड़ी सी साउंड्स हैं बैक पे, लेकिन अल्लाह के नाम पढ़े जा रहे हैं और इन बर्ड्स को देखकर लग रहा है ना कि वाकई अल्लाह है। जी जी मैं नहीं थकती अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। बैठिए, जज़ाकअल्लाह खैर। पूरा हो गया? अब आप फ्रेश अप रिलैक्स होते जाइए। आप देखिए कि कुदरती चीज़ तो कुदरती होती है ना। ये बर्ड्स देख के तो मेरे अब दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि अब इनको भी देखने जाना है। सर्च करें ये कहाँ मिलते हैं। एक पैरट गार्डन का पता चला, जाना है किसी ने? पैरट गार्डन, रंग बिरंगे तोते हैं। अल्लाह हो, स्मोकीस में जाना है। चले ठीक है, कोर्स ख़त्म होगा फिर जाएंगे, ग्रैंड तकमील वहाँ कर लेंगे। हैं आप नहीं होंगे तो आपको बुला लेंगे किसी तरह इंशाल्लाह ताला। जी ज़रूर आप कर लीजिए, और आप इसी दौरान अब अपने ये सारे बंद करके फोल्डर्स, तो अष्टम मुबशरा का फोल्डर खोल लें जी। ये बुरी बात है
तो
जी।
क्या इनके माँ बाप फासिक हैं?
देखिए पर्सनलाइज करके तो किसी को आप कुछ ना कहें, लेकिन अमल यही बताता है। फिस्क कहते इताअत की हदों से बाहर निकलना, खुशी के नाम पे या गम पे है। सवाल आपका सुन लिया सबने, फैसला अपने दिल से ले लीजिए। इतना खोल खोल के तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने मुफ्ती खुद बन जाएं। इस्तफ्ते कल्बक वलो अफतूक। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पढ़ेंगे।